वो परमेश्वर के बिना यह कैसे कर सकती थी? यह एक वास्तविक होगा, क्या ऐसा नहीं है? प्रभु के बिना नहीं हो सकता था। मैं उन सब में से प्रचार नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि मेरे हाथ कोई कठिन प्रश्न लग जाए, आप जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं तैयार रहूं। लेकिन ओह, यह बहुत ही आसान था। तो हो सकता है कि तब लोगों के बीच बहुत अधिक प्रश्न न हो, यह बस बहुत ही साधारण और सरल प्रश्न हो। खैर, मुझे खुशी होती है कि मैं उनका सबसे अच्छा उत्तर देने का प्रयास करूं, जितना मैं कर सकता हूं, प्रभु की सहायता से। और क्या बहन ऑर्गन ब्राइट आज रात हैं? बहन रूथ, क्या आप यहां हैं? बहन रूथ, यहां पर मेरे पास, ओह हाँ, मेरे पास यहां का पता है। और नहीं, मैं नहीं, ठीक है, मैं इसे यहीं से ले सकता हूं। मैंने इसे अपने बटुए या छोटी बैग में रखा था और मैंने अपने बटुए को घर पर ही छोड़ दिया। अब यदि पुलिस मुझे घर जाते हुए पकड़ लेती है बाय फिलिमेन, तो आप मुझे छुड़ाने के लिए आ जाना। बिली को बताना मैंने अपने बटुए को घर पर छोड़ दिया है। आज रात मैं बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हूं। और मैंने सोचा था कि यह मेरी जेब में है। मैंने तब कपड़े बदले थे। मैं आज दोपहर जल्दी में था, जल्दी से कुछ घास को काट रहा था और मुझे छोड़ना पड़ा था और जल्दी करना था, और अंदर आकर कपड़ों को बदला और यहाँ जल्दी से आ गया। और मैं शब्दकोश को लाया हूँ, लेकिन आप इसे बाद में वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उस पत्र के विषय में बुरा महसूस मत करना। यदि मुझे कभी इससे बुरा पत्र नहीं मिला, तो यह एक अच्छा पत्र होगा। वो अच्छा था, वो बहुत ही अच्छा था। मैंने आपको बताया था कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इस पर चला गया, आप जानते हैं, और बस इसे अब और नहीं रोक पाया। जो आपने कहा, मैंने तब सोचा, और यह बहुत ही अच्छा था, एक असली स्कूल शिक्षक की तरह लिखा जैसे लिखना चाहिए। यह अच्छा था और मैं इसकी सराहना करता हूं, और यह आपको देता है। आप देखो, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति के पत्र पसंद है जो आपसे थोड़ा भिन्न हो। देखो, यदि आप हर समय के साथ चलते हो, आप किसी से भिन्न नहीं होते हो, आप फीके पड़ने लगते हो। आपको थोड़ा भिन्न होना होगा, जिससे कि आप समझ सके और अंदर जा सके। और यदि आप नहीं देखते हैं, तो आप बस उलझन में पड़ जाते हैं। फिर आप जब आप ऐसा करते हैं, तो आप परेशानी में पड़ जाते हैं। आपको बस एक प्रकार से आगे चलते रहना है और किसी को लेना है जो आपसे अलग है, और कभी तो समय में एक बार अपने पंख फड़फड़ाना है। अफ्रीका में मैंने दो छोटे शेर को देखा, और वे छोटे से बच्चे ही थे, लगभग इतने से, धब्बेदार, छोटा, बहुत ही छोटा शेर, एक छोटा शेर, एक छोटी सी शेरनी, और अब वे बिल्ली के बच्चे की तरह दिख रहे थे। वे इतने छोटे थे, छोटे, सबसे सुंदर छोटी सी चीज, वे बस खेल रहे थे। और मैं उन्हें अमेरिका में वापस लाने जा रहा था। मैंने उन्हें एक पक्षी के पिंजरे में रखा था। मैं उन्हें वापस लाने जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं मिला जो उन्हें टीका लगाए, कोई दवाई दे, और पहले उन्हें टीका लगाए बगैर वे मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में लाने नहीं देंगे। और मुझे ये पूरे अफ्रीका में नहीं मिला। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि वो शेर है या नहीं, बस उसे हल्का सा पीछे चाटा मारो, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और आप जान जाएंगे कि वो एक शेर था, जिससे कि आपको पता चल सके कि वो कहाँ पर खड़ा था। इसी तरह से आपको कभी तो एक बार करना है, आप जानते हैं, ये पता लगाने के लिए एक प्रकार से पंखों को पीछे की तरफ फड़फड़ाना है। लेकिन अब हम शेर की तरह क्रोधित नहीं होते, हमने बस इसे पसंद करते हैं कि लोगों को सवाल पूछे। और इस तरह के प्रश्न, बहन रूथ, मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। यह एक, मैं इसे पसंद करता हूं। देखो, ये वास्तव में एक बेकार किस्म के हैं, जिसे मैं लेना पसंद नहीं करता, लेकिन वे एक, ये अच्छा था। अब हमारे पास कुछ अच्छे उत्तेजित करने वाले कुछ घरेलू प्रश्न हैं। वहाँ पीछे एक प्रचारक है, पीछे के कमरे में ठीक अभी मुझसे पूछा, कहा, प्रकाशित वाक्य 11 के दो भविष्यवक्ता, क्या वे रैप्चर से पहले आएंगे या ठीक इसराइल के जाने से पहले? और क्या अब इसी तरह के प्रश्न होते हैं जो आपको वहाँ जोड़े रखते हैं? लेकिन इस तरह के ये सरल प्रश्न ठीक है। लेकिन अब इससे पहले कि हम आरम्भ करें, आइए हम प्रार्थना के लिए अपने सिरों को झुकाए। पिता, इस बात पर ध्यान दिया गया कि जब आप 12 वर्ष के थे, आप मंदिर में शास्त्रियों और ज्ञानियों के संग पाए गए थे और उनसे वचनों पर चर्चा कर रहे थे, और वे इस पर अचंभित हो गए थे। वे पुराने समय के लोग थे और वचनों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, और मगर लगभग 12 वर्ष के एक छोटे लड़के को देखकर जो वचनों को समझा रहा था, जो बस चकित कर रहा था। आप अपने पिता के व्यवसाय में थे, आपने अपनी माँ से कहा, क्या तू नहीं जानती कि मुझे अवश्य ही अपने पिता के व्यवसाय में होना चाहिए, ताकि वचनों को उनके आत्मिक अर्थों के साथ समझाऊं। और अब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप जानते हैं कि हम कितने कमजोर और दुर्बल हैं, और हम किस प्रकार गलतियों के अधीन हैं, कि आज रात पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ आएं और हमें वचनों को समझाएं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं और आप पर निर्भर हूं, और यदि मैं कभी भी किसी भी समय अपने विचारों या अनुवाद को या कोई स्वार्थी चीज डालने की कोशिश करूं, कि इसे ऐसा बनाने की कोशिश करूं जिस तरह से मैं इसे समझा रहा हूं, तो यह सही होगा, तो मेरा मुंह बंद कीजिए प्रभु, जैसा आप करेंगे जब वे दानियल के पीछे आए, तब आपने सियो का मुंह बंद किया है। आप अब भी वही परमेश्वर हैं, और इसे पूरी तरह से, जैसा कि हम पवित्र आत्मा पर निर्भर हैं, होने पाए वो अब इन बातों को हम पर प्रकट करे, और फिर जब वो उन्हें बोलता है तो उन्हें इतना स्पष्ट करे कि जिसने प्रश्न किया है वो इसे ग्रहण कर सके, और यदि वो विपरीत उत्तर देता है जिसे मैंने हमेशा ही विश्वास किया है, तो मेरा हृदय भी आनंदित हो प्रभु, यह जानकर कि मैंने कुछ नया पा लिया है, और जो प्रभु का कोई अच्छा मार्ग है, क्योंकि आपने कहा वचनों में खोजें, क्योंकि उसमें आप सोचते हैं कि आपके पास अनंत जीवन है, और वे वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। अब वचन की इस शिक्षा के बाद यह निश्चित रूप से बहुत से विचारों और आदि को ऊपर लाएगा, और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अब कि ये सारे प्रश्न बहुत ही मधुरता से और शिष्टता से पूछे गए प्रतीत होते हैं, होने पाए पवित्र आत्मा शिष्टता से और मधुरता से उन्हें उत्तर दे, क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में और परमेश्वर की महिमा के लिए और उसकी कलीसिया की उन्नति के लिए मांगते हैं, आमीन। बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी भी चीज के लिए स्वार्थी उद्देश्य उसके पूरे स्वाद को ही बेकार कर देता है, और अब इस वचन के बाद प्रश्न पूछे गए हैं, और यदि मैं आज रात बस थोड़ा सा फुसफुस की आवाज करता हूँ, क्योंकि मैंने एक दांत निकाला है और मैंने इसे डाला है, मैं प्रचार नहीं कर सकता। जब मैं प्रचार कर रहा होता हूँ तो धीमा हो जाता हूँ। यदि मैं इसे बाहर निकालता हूँ और मेरे मुंह से लगभग सीटी बजने लगती है। श्रीमती बिली ग्राहम ने उस पर एक कहानी बताई थी। सबसे ज्यादा उत्तेजित बहन ने कभी उसे देखा था जब उसके पति ने सामने का एक दांत निकाला था, और उसने दांत को गुम कर दिया, और उसे तुरंत एक टेलीविजन कार्यक्रम करना था, और वह नहीं कर सका। यह एक प्लेट पर था जिस पर कुछ और पीछे के दांत थे, और जब भी वो बात करता तो सीटी बजती सुई सुई उसके दांत के बीच में से, और उसने कहा कि वो अपने घुटने पर नीचे था, प्रार्थना कर रहा था और पसीना बह रहा था टेलीविजन प्रसारण से 10 मिनट पहले, और अंत में उन्होंने इसे वहाँ पाया जहाँ यह उसके पैंट में से उसके जूतों के अंगूठे में गिर गया था। वहाँ पर काम करने वालों में से एक ने उस नकली दांत को पाया, और श्रीमती ग्राहम ने इसे उस पर बताया, और यहाँ पर, और इसलिए मैंने इसे एक छोटे से कागज के टुकड़े में लिया, मुझे लगता है कि मुझे ये यही अपनी बाइबल में से मिला, और इसलिए ये एक प्रकार का, जब हम थोड़े बूढ़े और निर्बल हो जाते हैं, आप जानते हैं, और उन्हें खोना पड़ता है, यह इसे खराब बना देता है, और इसलिए जब मैं भाई रॉबर्टसन के साथ बाहर था, और वे एक सुबह मैं उस दांत पर ब्रश कर रहा था, और उसका एक टुकड़ा टूट गया, और मुझे इस दांत को लगवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना था। सो प्रभु अपनी आशीषों को जोड़े। अब हम जा रहे हैं, अब यदि मैं कर सकता हूँ तो मैं उनमें से हर एक में से होकर जाने की कोशिश करूँगा, और भाई टोनी, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे आपके सपने का अनुवाद मिल गया, और यह अद्भुत था। मुझे इसे देखकर बहुत खुशी हुई, और यह एक अच्छा अनुवाद है जो मैं सोचता हूँ कि मुझे इसे यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बताना चाहिए, इसलिए मैं इसे आपको निजी तौर पर बताऊंगा, यदि आप इसे इस तरह से चाहते हैं तो। उसने एक रात को मुझसे पूछा, उसने एक सपना देखा था, और मैं उसे नहीं बता सका कि यह ठीक ठीक क्या था, जब तक मैं प्रभु के पास जाकर और उसके लिए प्रार्थना नहीं की। तब प्रभु ने उसे मुझ पर प्रकट किया और मुझे बताया कि उसका अनुवाद क्या है। भाई टोनी, यह अद्भुत है और आपके लिए अच्छी खबर है। अब पहले प्रश्न में अब मैं नहीं जानता हूं कि सबसे पहले कहां से आरंभ करूं, क्योंकि वे सभी अच्छे हैं, लेकिन अब हम बहुत अधिक समय नहीं लेने की कोशिश करेंगे और हो सकता है हम उन्हें रविवार को समाप्त करें यदि हम उन सभी को नहीं ले पाते हैं। समझाएं कि इसका क्या मतलब होता है, सनातन का दंड जो मती 25:46 में है, लेकिन यही प्रश्न है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, लेकिन राज्य के संतान अंधियारे के अंदर डाल दिए जाएंगे, क्या यह बात उन्हें परमेश्वर के मन से निकाल देने के समान ही है? अच्छा, अब आपका पहला प्रश्न लेते हैं जो संत मती में पाया जाता है, 20:25 अध्याय। अब मैंने कभी भी इनका अध्ययन नहीं किया है, बस उन्हें वहाँ पीछे देखा और बस मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं उन्हें अच्छे से देखूं, जितना मैं जानता था कि कैसे देखना है। और मेरे जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोलें। अब मैं इसे ग्रीक शब्दकोश से भी निकालना चाहता था जिससे आपको इसका वो मूल मिल सके, और मैं इसे पसंद करता हूँ। तो फिर हमारे पास ये दोनों में होगा, उस ग्रीक और दूसरे में। और अब ये थोड़ा धीमा होगा और अध्ययन करना, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर और वचनों को लेना है, बस जहाँ कहीं भी मैं उन्हें पा सकता हूँ और उन्हें उनके स्थान पर ले आना है। तो ठीक है, अब क्या किसी को बाइबल चाहिए अध्ययन करने के लिए? यदि आप चाहते हैं तो अपना हाथ ऊपर उठाएं और मैं सोचता हूं कि हमें यहाँ पीछे 3 या 4 हाथ उठे हुए दिखते हैं। यदि आप वचनों से अध्ययन करना चाहते हैं तो ठीक है। बाइकॉक्स, क्या आप यहाँ आकर और मुझे इन बाइबल को देंगे? और ये आपके लिए अच्छा है यदि आप कर सकते हैं तो, वहाँ एक है। और आप उन्हें नीचे से ले जाएं यदि आप चाहते हैं, जो बहुत है। और जो कोई भी एक चाहता है बस अपना हाथ ऊपर उठाए रखें, भाई उन्हें सीधे आपके पास लाएगा। देखो, और हम इनका एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं। और बस अब इसे पढ़े जाने और अंतिम अध्याय पर इब्रानियों की किताब के पहले 7 अध्याय शिक्षा देने के बाद, निश्चय ही वो भाई जिसने इन विषयों को लिखकर ले लिया है, भाई मर्सियर और भाई गोवर्ड, उनके पास यह है और वे अब उन्हें किताब के रूप में छापने की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास ये है अब। और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आधा अधूरा छानबीन किया हुआ है, हमने बस सतह तक खोदा है। और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उनके नाम रखे हैं और उन छोटी छोटी मूल्यवान बातों को लिया और बस छोटी छोटी मूल्यवान बातों को पॉलिश किया है, इब्रानियों की शिक्षा की बस कुछ छोटी छोटी मूल्यवान बातें। भाई मर्सियर उन्हें जल्द ही छपे हुए रूप में लेकर आएंगे, जो कोई भी उन्हें चाहता है। अब यह यहाँ है, यह लाता है, आप बस इसमें से होकर नहीं जा सकते। सुसमाचारक कलीसिया में, जो कि यह एक सुसमाचारक कलीसिया है, आप बहुत से लोगों के संदेह और विचारों को जगाए बिना कोई शिक्षा में होकर नहीं जा सकते। आपको इसे करना होगा। अब मैं एक शिक्षक होने से बहुत दूर हूँ, बाइबल का वर्णन करने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कभी कुछ भी कहने की कोशिश नहीं करता या यहाँ तक कुछ भी करता हूँ, लेकिन पहले इसके लिए मांगता हूँ और इसके लिए मेरी सबसे अच्छी बात को पता लगाने की कोशिश करता हूँ। कल रात को एक प्यारे भाई ने मुझसे यह पूछा था, उसने कहा, भाई ब्रैनम, भाई सेवार्ड ने एक बार कहा था कि आप बस अपने आप को कहीं भी दबने नहीं दे सकते, देखिए आपके पास इससे बाहर निकलने या इससे दूर होने का हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। मैंने कहा, तो इसका कारण ये है कि मैं कुछ भी करने से पहले हमेशा सोचने की कोशिश करता हूँ, देखा, और फिर यदि लोग मुझसे पूछें तो मैं उन्हें बता सकता हूँ कि मेरे विचार क्या थे, देखा। लेकिन ऐसा है यदि आप सही सोचते हैं तो, और इससे पहले कि आप कुछ भी करें, उस पक्ष को लेने का प्रयास करते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि लें, तब इसे नीचे दबाना वास्तव में मुश्किल होगा। आप उस समय की कल्पना नहीं कर सकते कि आहाब ने एलिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। क्या आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं जब फरीसियों ने यीशु के बात को पकड़ने की कोशिश की? देखिए, उसने तुरंत ही उत्तर दिया था, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया उसने इसे परमेश्वर की इच्छा से किया, और उसने इसी तरह से वो इसे ले सकता था। अब इसी तरह से हम इसे चाहते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है, हम सवाल को रखेंगे, स्पष्ट कीजिए इसका क्या अर्थ है। सनातन दंड मती 25:46 में। अब जरा ध्यान से सुनिए, अब हर एक जन मती 25:46 और ये लोग सनातन के दंड को भोगेंगे। अब सवाल ये है, क्या समझाएं? अब सनातन शब्द उस शब्द से आता है हमेशा और हमेशा के लिए, और हमेशा के लिए समय की एक अवधि होती है। इसका केवल अर्थ होता है इतना इतना समय, हमेशा की नहीं। अब यदि आप पढ़ेंगे, मैं नहीं जानता कि प्रश्न किसने लिखे हैं, क्योंकि किसी ने उन पर अपना नाम नहीं लिखा, इसे नहीं लिखना था, मैं उन्हें नहीं चाहता, देखो। लेकिन ये लोग सनातन के दंड को भोगेंगे। अब देखो, यही दुष्ट है। अब प्रिय लोग, जिसने सवाल पूछा है, बस इसका बाकी का पढ़ेंगे। परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, दुष्ट लोग सनातन दंड भोगेंगे, समय की एक निश्चित अवधि में प्रवेश करेंगे, लेकिन धर्मी के पास अनंत जीवन होता है। आपको कभी भी अनंत दंड नहीं मिलेगा, नहीं हो सकता। देखो, यदि उन्हें अनंत दंड मिला है तो उनके पास अनंत जीवन होना है। यदि उनके पास अनंत जीवन है, फिर तो वे बचाए गए हैं। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि आप देखेंगे, वो सवाल खुद से पूछा, स्वयं उत्तर देता है, देखा। और ये, अब देखो, मैं यहाँ से पहले लूँगा, और वे 20वें में 44वां पद, और उन्होंने भी उत्तर दिया, उससे कहा, प्रभु, हमने कब भूखा और कब प्यासा रखा, या परदेसी या नंगा या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ तक कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ किया, उसने इसे मेरे लिए किया। और ये लोग सनातन में सनातन दंड भोगेंगे, यही वो दुष्ट है, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। फर्क को देखो, दुष्टों का दंड सनातन का है, लेकिन सनातन दंड समय की एक अवधि है। अब यदि ये वही होता तो ये लिखा हुआ होता, और ये सनातन में दंड भोगेंगे, और वे दूसरे अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, देखा, या वे अनंत दंड को भोगेंगे और वे दूसरे अनंत जीवन में जाएंगे। देखो, यदि कोई अनंत दंड है तो हमेशा हमेशा के लिए दंड दिया जाएगा, तब तो वहाँ एक अनंत, उसके पास अनंत जीवन है, और केवल एक ही अनंत जीवन है, और वो परमेश्वर की ओर से आता है। हर एक चीज जो बिना शुरुआत की है, उसका कोई अंत नहीं होता। हर एक चीज जिसकी शुरुआत है, उसका अंत होता है। समझे, मैं क्या बताना चाहता हूँ? अब वचन स्वयं ही उस प्रिय व्यक्ति का उत्तर देता है। अब यदि आप इसे शब्द कोश में से लेंगे और ये अंदर डाले जाएं, काटते हुए और सना और आग में झील के अंदर चले जाएंगे। अब शब्द AINION का अर्थ होता है दंड की एक अवधि, यूनानी शब्दकोश में ठीक यहाँ दंड की अवधि या दंड का समय है। देखो, वे दंड के समय के अंदर चले जाएंगे। शब्द का प्रयोग किया जाता है AINION, जिसका अर्थ है समय, एक समय, एक सीमित समय। फिर इसे यहाँ अनुवाद में वापस अंदर ले जाते हैं। अंग्रेजी में सनातन होता है, एक सीमित समय। देखो, यह ग्रीक से आता है, समय की एक सीमा। वो शब्द आइनियन या AINION, आइनियन का अर्थ है दंड का एक सीमित समय। लेकिन फिर दूसरों को पढ़ते हैं, लेकिन ये अनंतता में जाएंगे, यही एक भिन्नता है। देखो, अनंत जीवन, अनंतता, यह अनंत काल शब्द से आता है, और अनंत काल का ना तो आदि था और ना ही अंत, यह हमेशा और हमेशा के लिए है। अब यह इसका उत्तर होना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, और यह लोग सनातन के अंदर दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी जन, दुष्ट लोग सनातन के अंदर दंड भोगेंगे। कुछ समय की अवधि के लिए दंड पाएंगे, हो सकता है 1 अरब वर्ष, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको निश्चित रूप से आपके पापों के लिए दंडित किया जाएगा। लेकिन जैसा कि निश्चित है कि पाप की शुरुआत थी, पाप का अंत भी है। दंड की शुरुआत थी और दंड का एक अंत है, और नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था। देखा तो ठीक है, अब मेरे पास इसका उत्तर देने के लिए यहाँ एक और प्रश्न है, बस कुछ ही मिनटों में, जो एक सुंदर है, इसमें जुड़ता है। अब लेकिन ये यहाँ, लेकिन राज्य की संतान अंधकार के अंदर डाली जाएगी, क्या यह उन्हें परमेश्वर के मन से निकाल देने के समान ही है? नहीं, यह एक समान नहीं होगा। अब आप यहाँ विवाह भोज की बात कर रहे हैं, अब और राज्य की संतान, जैसा कि यहाँ पूछा गया था, राज्य के संतान यहूदी हैं, और उन्हें बाहरी अंधकार में डाल दिया गया था, और उन्हें बाहरी अंधकार में डाल दिया गया है, और वे रोने और विलाप करने और दांत पीसने के समय में से होकर गुजरते हैं। उन्हें बाहरी अंधकार में डाल दिया गया था, क्योंकि यह आपको और मुझे पश्चाताप करने का समय देगा। लेकिन वे परमेश्वर के मन से कभी निकाले नहीं गए। वो इज़राइल को कभी नहीं भूलेगा, और इज़राइल को, जैसा कि बाइबल का कोई भी पढ़ने वाला जानता है, कहा जाता है राज्य की संतान। देखो, यह राज्य है, प्रतिज्ञा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर राष्ट्र के साथ व्यवहार करता है जब उसने इज़राइल से व्यवहार किया, जो कि राज्य की संतान है। अब आपको याद है, उसने वहाँ कहा, और अब्राहम और इसहाक और याकूब एक जगह पर अंत समय में आएंगे और राज्य में स्थापित हो जाएंगे। देखो, और अब्राहम, इसहाक और याकूब राज्य में होंगे। वे थे, वे लोगों को आशीष देने वाले राज्य थे, लेकिन राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। अब यहाँ उल्लेख की बात आती है, यहाँ वो दूल्हा है। जब दूल्हा आता है, जबकि वे 5 कुंवारियाँ प्रभु से भेंट करने के लिए निकली, और उन्होंने अपने दिए में तेल नहीं लिया, और उन अन्य 5 ने अपने दिए में तेल लिया। अब यदि आप ध्यान देंगे, तो यह एक सुंदर तस्वीर है, यहूदी और अन्य जाति दोनों के साथ अस्वीकृति की नाई। इसे मन में रखें, वहाँ हर समय 3 वर्ग के लोग होते हैं, यहूदी, अन्य जाति जो औपचारिक रूप से हैं, यहूदी, अन्य जाति और कलीसिया। यदि आप उन्हें मिला देते हैं, तो आप निश्चित रूप से उलझन में पड़ जाएंगे, जब आप प्रकाशित वाक्य पर पहुंचेंगे। यदि आप नहीं, जैसे श्रीमान बोहनोन ने मुझसे एक बार कहा, बिली, कोई भी प्रकाशित वाक्य को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे बुरे सपने आएंगे। क्यों? उसने कहा, यहाँ नीचे धरती पर एक दुल्हन है, और वो अजगर उसके साथ युद्ध करने के लिए अपने मुंह से तेजी से पानी बहाता है, और कहा, फिर उसी समय जब दुल्हन खड़ी होती है 144,000 के जैसे, यहोवा विटनेस की शिक्षा सीने पर्वत पर, और उसी समय दुल्हन स्वर्ग में होती है। नहीं नहीं, आप गलत हो, वहाँ 3 वर्ग के लोग हैं, देखो, जो कि अस्वीकृत किए गए यहूदी, और वहाँ सोई हुई कुंवारी है, जो कि पानी या स्त्री का बीज नहीं है, यह स्त्री के बीज का अवशेष है, जो अजगर ने उसके मुंह से तेजी से पानी बहाया, प्रकाशित वाक्य 11। और फिर असल में 144,000 यहूदी बिल्कुल भी दुल्हन नहीं थे, वे यहूदी कलीसिया के बचे हुए लोग हैं, और यहोवा विटनेस की शिक्षा जो उन्हें दुल्हन के रूप में रखती है। मैं नहीं देखता कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह दुल्हन नहीं है। यदि आप वहाँ प्रकाशित वाक्य में ध्यान देंगे, तो इसने कहा, और वे कुआरियाँ हैं, और ये दास हैं, और एक दास क्या होता था? वे दास मंदिर के पहरेदार होते थे, जो रानी की रखवाली करते थे, क्योंकि वे पुरुष थे जिन्हें जीवाणु रहित बना दिया गया था। वे, क्या आपने ध्यान दिया, कहा, उन्होंने स्त्रियों के साथ अपने आप को अशुद्ध नहीं किया था, वे मंदिर के दास थे, और यह एक चुनी हुई संख्या के लोग थे, जिसे परमेश्वर ने यहूदियों में से चुने हुओं में से लिया था। अब यदि आप ध्यान देंगे, यदि हम उसे बस कुछ समय ले सके, तो यह आपके मन में एक तरह से बस जाएगा, जहां आप वास्तव में कर सकते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य लें, 7वां अध्याय, और हम अब यहां पर देखेंगे, कहा, इसने क्या कहा, यह एक सुंदर चीज है। और इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे। अब यह यज्ञ 9 के समांतर है, जहां उसने यहूदियों के विनाश को देखा और यहां वो अन्य जातियों के विनाश को देखता है। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। और मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार दूत खड़े देखे, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे। हवाओं का अर्थ है युद्ध और लड़ाई, ताकि हवा पृथ्वी या समुन्द्र पर या किसी पेड़ पर न चले, और यह वो युद्ध है वे थामे हुए थे। ओह, यदि हमारे पास इस प्रश्न पर विस्तार से जाने का समय होता था। ऐसा घटित हुआ, यही है जहां रसेल उलझ गया। रसेल ने इसे आते हुए देखकर भविष्यवाणी की, उसने भविष्यवाणी की यह प्रभु यीशु का आगमन होगा, नहीं जानते हुए कि यह कलीसिया का मोहर बंद होना था। देखा, और वे सोचते हैं कि किस तरह विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, देखो यह नवंबर की 11 तारीख को दिन के 11 बजे रुक गया, 11वें महीने, 11वें दिन और 11वें घंटे में, और उसके तुरंत बाद ही यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा प्रकट किया गया था, और कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बिल्कुल ठीक उसके तुरंत बाद। यदि आप इसे प्रकाशित वाक्य में लेते हैं, हमने किस तरह से इसे एक साथ जोड़ा, और फिलाडेल्फियाई और लॉटकिन युग के बीच, और मेथोडिस्ट के पास फिलाडेल्फियाई युग था, भाईचारे का प्रेम, और अंतिम युग कलीसियाई युग का लॉटकिया युग था, जो गुनगुना युग था। और उसने वहाँ कहा, मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार, खुला द्वार रखा है, एक खुला द्वार। और यदि आप उन वचनों को वापस देखेंगे तो ये सारे संदेश को ठीक एक स्थान के अंदर जोड़ देगा, ताकि आपको बिल्कुल सही रूप से दिखा सके। देखो, यहाँ पर जो हर एक चीज थी, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, बपतिस्मा में, जो हमें इसमें सीधे लेकर जाता है, जो पूर्ण रूप से एक कैथोलिक का मत सिद्धांत था, और ये कभी भी एक मसीही सिद्धांत नहीं था। नहीं श्रीमान, मैं केवल, हमने आज रात इसे ठीक यहाँ लिया है इसके अंदर आने के लिए, शब्द कोश के साथ भी, देखा, हाँ श्रीमान, और इतिहास के साथ भी। बाइबल में कभी भी किसी ने इस तरह बपतिस्मा नहीं लिया था, या न ही बाइबल के बाद पहले के 600 वर्षों में। और मैं इसे ठीक यहाँ कैथोलिक के अपने खुद के सिद्धांत से साबित कर सकता हूँ कि वे ही हैं जिन्होंने इसे आरंभ किया था, और छिड़काव करना और जल डालना, वे वहाँ से निकलकर वेस्लियन कलीसिया के अंदर आए, और वहाँ से मेथोडिस्ट कलीसिया में आए, मेथोडिस्ट इसे बैप्टिस्ट के पास लेकर आया, बैप्टिस्ट इसे आगे लेकर आया, और यह अब भी एक झूठी शिक्षा है। और बाइबल में वापस आकर, और आपको साबित कर सकता हूँ कि बाइबल ऐसा कहती है, तुम्हारे पास एक नाम है जिसमें तुम जीते हो लेकिन तुम मरे हुए हो। यह बिल्कुल सही है, और उनके पास था। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि बाइबल सिखाती है कि वे अंधकार युग आने तक बपतिस्मा में उसके नाम का उपयोग करेंगे, उस चौथे युग के अनुसार, उस कलीसिया युग के, पिरगमुन कलीसिया युग। और उसने उसमें कहा, उस 1500 वर्षों के अंधकार युग के दौरान हरेक ने कहा, तुम्हारे पास थोड़ा सा उजाला बचा है, क्योंकि तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। जब उस दूसरे युग की बात आती है, कैथोलिक युग, उसने कहा, तुम्हारे पास एक नाम है जिसमें तुम जीते हो लेकिन तुम मरे हुए हो, और तुमने मेरे नाम का इनकार किया है, वहाँ आप हैं। समझे, ये सब बस एक बड़ी सुंदर तस्वीर को एक साथ जोड़ता है, पूरी बाइबल को। अब इस पर ध्यान दें, चारों हवाओं को थामे हुए थे, और मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मोहर लिए हुए स्वर्ग से ऊपर की ओर जाते देखा, वो मोहर। अब जीवित परमेश्वर की मोहर क्या है? अब आप एडवेंट भाई लोग कहेंगे, सबत के दिन को मानना। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये वचन में से दिखाएं, यह वहाँ नहीं है, एक स्थान में भी नहीं, मोहर है। यदि आप इफिसियों 4:30 को पढ़ेंगे जल्दी से, आप जान जाएंगे कि जीवित परमेश्वर की मोहर क्या है। इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर तुम्हारे छुटकारे के दिन तक मोहर की गई है, न ही अगली बेदारी तक, लेकिन अनंतता की सुरक्षा मिली है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित न करो, जिससे तुम्हें तुम्हारे छुटकारे के दिन तक मोहर बंद किया गया है। देखें कि क्या इफिसियों 4:30 ऐसा नहीं कहता? फिर अपने बाइबल के किनारे पर लिखा हुआ है, उसे लें और इसे लेकर बाकी वहाँ के वचनों में से होते हुए जाएं और पता करें। अब तुम्हारे छुटकारे के दिन तक मोहर बंद, जीवित परमेश्वर की मोहर होना। अब याद रखें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद तक पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के रूप में नहीं सिखाया गया था। हमने अभी हमारी स्वर्ण जयंती को मनाया है 40 वर्ष या जुबली का 40वां वर्ष। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। अब आप अपने प्रश्न पर आ रहे हैं, वो संतान देखो हमारे परमेश्वर के दासों के माथे पर हानि नहीं करना, पृथ्वी को नष्ट नहीं करना, परमाणु बम को फटने न देना जब तक हमारे परमेश्वर के दासों पर मोहर न लगे, तब तक बात पूरी न होने देना। अब यदि हम उसे पीछे लेकर और वापस वहाँ इसमें से होकर जा सकते, किस तरह से यहाँ तक उस विश्व युद्ध के पतन पर इस किताब के दूसरे भाग में जब जनरल एलनबी ने तब तक संघर्ष किया जब तक कि वो यरूशलेम की सीमा तक नहीं पहुंच गया, और उसने तब इंग्लैंड के राजा को वापस तार भेजा और कहा मैं शहर की पवित्रता के कारण उस पर आग को नहीं लगाना चाहता। उसने कहा मैं क्या करूं? उसने कहा प्रार्थना करो, और वह फिर से उसके ऊपर से उड़ने लगा। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने कहा अले नबी आ रहा है, और वहाँ पर मुसलमान लोग थे, सोचा उसने कहा अल्लाह आ रहा है, और उन्होंने सफेद झंडा फहराया और आत्मसमर्पण कर दिया, और अले नबी ने यरूशलेम में कुछ किया और बिना एक गोली चलाए इसे कब्जा कर लिया। भविष्यवक्ताओं के अनुसार ये सही बात है, और इसे यहूदियों को वापस कर दिया। तब उन्होंने एक हिटलर को खड़ा किया ताकि यहूदियों को और पूरी दुनिया में सताया जा सके और उन्हें वापस वहीं भेज दिया जाए, और बाइबल ने कहा कि वो ऐसा करेगा, उन्हें उकाब के पंखों पर वापस लेकर आएगा। और जब उन्होंने वापस आना आरंभ किया उस लाइफ पत्रिका, और उन्होंने इसे कुछ हफ्ते पहले छापा था जहाँ से वे उन्हें हजारों की संख्या में वापस यरूशलेम ले आए, और वे उन बूढ़े लोगों को पीठ पर लाद कर ले जाने लगे, उनका इंटरव्यू या साक्षात्कार लिया गया। मैंने इस सब को सिनेमा की रील और तस्वीरों में देखा है, और उसने कहा वहाँ दाऊद का चार कोने वाले तारों का झंडा टंगा हुआ था जो दुनिया का सबसे पुराना झंडा है जिसे पहली बार 2000 वर्ष में फहराया गया। यीशु ने कहा जब अंजीर के पेड़ में पोपल लगेगी तब यह पीढ़ी जाती न रहेगी, और यहाँ वे अपने बूढ़ों को भीतर ला रहे थे और कहा क्या तुम मातृभूमि में मरने के लिए वापस आ रहे हो? कहा नहीं, हम मसीहा को देखने के लिए आए हैं। और भाई मैं आपसे कहता हूँ हम द्वार पर हैं, वहाँ पर वे हैं, वे जो वहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, ना ही ये यहूदियों का झुंड जो धोखा देकर आपके जूठे दांत को भी निकाल दे यदि वे कर सकते हैं। ये लोग यहूदी नहीं हैं जिसके बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन ये वहाँ उस ओर वे लोग हैं जिन्होंने उस व्यवस्था और बातों का पालन किया है, और यहाँ तक ये जानते भी नहीं कि एक मसीहा था। और भाई स्टॉकहोम में भाई पेट्रस ने उन्हें 100,000 नए नियम के किताब भेजे, और जब उन्हें यह मिले तो वे उन्हें पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है, यदि यह मसीहा है तो आओ हम उसे भविष्यवक्ता के चिन्ह को करते हुए देखें और हम उस पर विश्वास करेंगे। मेरी सेवकाई के लिए क्या ही व्यवस्था है, मैं 2 घंटे के भीतर ही यरूशलेम के फाटकों पर था, अंदर जा रहा था, और मैं मिस्र के काहिरा में था, और मैं वहाँ पर चल रहा था, और पवित्र आत्मा ने कहा अभी मत जाओ। मैंने सोचा ये मेरी बस कल्पना ही थी, मेरा टिकट निकल चुका है, मैं अपने मार्ग पर हूँ, वो व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए बाहर है, पूरा झुंड स्कूल और इत्यादि के लोग। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा और आत्मा ने कहा मत जाना, तुम मत जाना। मैं वापस टिकट के एजेंट के पास गया, मैंने कहा मैं इस टिकट को रद्द करना चाहता हूँ, मैं एंटेस ग्रीस मार्स हिल की ओर जाना चाहता हूँ। और उसने कहा ठीक है, आपकी टिकट तो यरूशलेम के लिए बता रही है श्रीमान। मैंने कहा मैं यरूशलेम जाने की बजाय एंटेस जाना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा रुका हुआ है, वो घड़ी अभी तक नहीं आई है, यह बस सही घड़ी नहीं है। देखो जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें कहते हुए हानि न पहुंचाना, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न लगा दें, हर कोई जानता है कि यह पवित्र आत्मा की मोहर है। देखें, और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अब यदि वे यहूदी नहीं हैं, इसे देखें कि इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 144,000 पर मोहर दी गई, उनमें अन्य जाति नहीं है, यह अंत समय पर है। देखो यहूदा के गोत्र के 12,000, रूबेन के गोत्र के 12,000, और आगे गाद के 12,000, नेफ्तालीम और वहाँ से आशेर तक, और जबुलून, और ये सारे इसराइल के 12 गोत्र और 12 गुना 12 कितने होते हैं? 144,000। वहाँ 144,000 यहूदी हैं, ना ही अन्य जाति। यहूदी इसका दुल्हन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहोवा विटनेस उनकी शिक्षा पर गलत हैं। बाइबल स्पष्ट रूप से कहता है कि वे यहूदी हैं और अन्य जाति नहीं हैं। वे परमेश्वर के दास हैं और अन्य जातियों को कभी भी दास नहीं माना गया। हम बेटे और बेटियां हैं, दास नहीं। अब इसका बाकी का भाग पढ़ेंगे। जैसे तरबूज खाने वाले आदमी कहता है यह अच्छा है, लेकिन आओ हम इसमें से कुछ और भी खाएं, तो ठीक है। यहाँ परमेश्वर के पास इसमें बहुत कुछ है। अब ध्यान दें, अब अभी हम 8वें पद पर हैं। और जबुलून के गोत्र को 12,000 को मोहर, यूसुफ के सारे गोत्र पर 12,000 पर मोहर कर दी गई थी, बियामिन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर कर दी गई थी। देखो, यूहन्ना ने यहूदी होने पर उनमें से हर एक को पहचान लिया और उसने इसराइल के 12 गोत्रों को देखा। प्रत्येक गोत्र में से 12,000, 12 गुना 12 अर्थात 144,000 होता है। यहाँ पर वे हैं ना ही कलीसिया, वे यहूदी। बाइबल ने यहाँ कहा वे सारे इसराइल की संतान हैं, प्रत्येक गोत्र का नाम। अब देखो 9वां पद, इसके बाद अब यहाँ पर दुल्हन आती है। इसके बाद मैंने दृष्टि की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। वहाँ आपके मंदिर के दास हैं, वे बस 144,000 हैं, बस एक छोटा सा स्थान है, बस छोटे से मंदिर के पहरेदार जो दुल्हन के साथ होने जा रहे हैं, केवल उसके अनुरक्षण। यही 144,000 हैं, दुल्हन के अनुरक्षण हैं, मंदिर के दास। देखो, यकीनन मैं जानता हूँ कि आप यहाँ 14 पर वापस जाएंगे और कहेंगे क्यों वे दुल्हन के साथ होते हैं, जहाँ कहीं भी वे, बिल्कुल, रानी जहाँ भी जाती थी दास या पहरेदार उसके साथ यात्रा करते थे। ये सच बात है, लेकिन वे क्या थे? वे अनुरक्षण के अलावा और कुछ नहीं थे। और ठीक यही है वचन यहाँ ऐसा होने की घोषणा करता है। ध्यान देना, और इसके बाद, और मैंने दृष्टि की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से वहाँ आपकी अन्य जाति दुल्हन आ रही है। तो ठीक है, ये मेमने के सामने खड़ी है, वहाँ उनका उद्धार करता है। वो मेमना, ना ही व्यवस्था, मेमना, अनुग्रह, श्वेत वस्त्र पहने हुए। देखो, कुछ ही मिनटों में, देखो, क्या वो सफेद वस्त्र संत की धार्मिकता नहीं है? और उनकी हाथ की हथेलियों में, और वे बड़ी ऊंची आवाज से पुकार कर कहती हैं, क्या यह पेंटिकॉस्टल बेदारी नहीं है? मैंने ऐसी कभी भी नहीं सुनी, कहते हुए कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार करो। और सारे दूत उस सिंहासन के चारों ओर खड़े थे, और प्राचीन और चार प्राणी, वे गिर पड़े, वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत किया, कहते हुए आमीन, आशीष, महिमा, ज्ञान, धन्यवाद, आदर, शक्ति, सामर्थ हमारे परमेश्वर की युगानुयुग के लिए हो, आमीन। यह तंबू की सभा के समय जैसा दिखाई पड़ता है, क्या ऐसा नहीं लगता है? होने जा रही है। यह कौन था? 144,000? बिल्कुल भी नहीं। यह बड़ी संख्या है कि कोई भी मनुष्य नहीं, सारे जातियों, भाषाओं और राष्ट्रों की। क्या आप नहीं देख सकते, मेरे प्रिय मित्र? अब देखो, अब इसे पढ़ेंगे। अब और इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये क्या है, और ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं, और कहाँ से आते हैं? प्राचीन ने यूहन्ना से कहा, जो एक यहूदी था और 144,000 को पहचानता था, कहा, अब तुम उन्हें जानते हो, वे सभी यहूदी हैं, लेकिन ये कौन हैं? वे कहाँ से आए हैं? देखा, प्राचीन ने क्या कहा? एक प्राचीन ने उत्तर दिया, यही जो सिंहासन के सामने प्राचीन है, मुझे उत्तर दिया, कहते हुए, ये कौन है जो श्वेत वस्त्र पहने हुए है, और वे कहाँ से आते हैं? अब हम सभी यहूदियों और उनकी वाचा और आदि को जानते हैं, लेकिन ये कब आए? अब देखो, और मैंने उससे कहा, स्वामी, तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। यूहन्ना ने कहा, यह अभी मेरे सामने बीत कर गया है, मैं नहीं जानता। और उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े महासंकट में से निकल कर आए हैं, परीक्षाओं और उन बहुत से खतरों, कठिनाइयों और फंदों में से होते हुए मैं निकल कर आया हूँ। देखा, ये बड़े महासंकट में से निकल कर आए हैं, और इन्होंने उनके वस्त्र धो लिए हैं कलीसिया में। क्या यह सही दिखाई पड़ता है?
washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.
इन्होंने उनके वस्त्र को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और दिन और रात उसकी सेवा करते हैं। कौन मेरे घर में मेरी सेवा करता है? मेरी पत्नी, क्या ये सही है? और उसके मंदिर में जो मेरे घर में और मेरी अर्थव्यवस्था में मेरे साथ बनी रहती है, वो मेरी पत्नी है, वही है जो मेरे साथ बैठती है और मेरे कपड़े धोती है और मेरे लिए चीजों को तैयार रखती है, और वो जो सिंहासन पर बैठता है वो उनके बीच में वास करेगा। ओह प्रभु, सुनना। और वे फिर भूखे न होंगे, ऐसा दिखाई देता है जैसे वे साथ आने वाले कुछ भोजन से चूक गए हों। न ही वे फिर कभी प्यासे होंगे, और न उन पर अब और धूप पड़ेगी और न कोई तपन, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वहाँ है वो, वहाँ आपकी दुल्हन है, वहाँ आपके 144,000 हैं जो आपके दास हैं। सो राज्य की संतान यहाँ है। प्रिय व्यक्ति, जिसने प्रश्न को पूछा है, यह एक जिसने इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछा, मैं सोचता हूँ कि मैंने शायद इसे यहाँ पीछे छोड़ दिया है कहीं तो, लेकिन जब उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें परमेश्वर के मन से निकाल दिया जाएगा, उन्हें कुछ समय के लिए आत्मिक लाभ से बाहर कर दिया जाता है। देखिए, बस छोटे से ऋतु के लिए, क्योंकि जब भविष्यवक्ता ने इस दिन इज़राइल को देखा कि वो उसके पास आ रही है, तो उसने कहा, अच्छा क्या तब इज़राइल होगा जब सबत के दिन को उठा लिया जाएगा? और वे सबत के दिन में बेचते थे उसी तरह से जैसे बाकी के दिनों में, और यह सारी चीजें। उसने कहा, ठीक है, क्या इज़राइल को पूरी तरह से भुला दिया जाएगा? उसने कहा, यह आकाश से कितना ऊंचा है, धरती कितनी गहरी है, इसे इस छड़ी के साथ नापना जो तुम्हारे सामने रखी हुई है। उसने कहा, मैं नहीं कर सकता। उसने कहा, न ही मैं इज़राइल को कभी भूल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, इज़राइल को कभी भी नहीं भुलाया जाएगा। तो आप देखो, सनातन और अनंत दो अलग अलग चीजें हैं। इज़राइल को निकाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर के मन से नहीं, और पौलुस इसे यहाँ पर बोलता है, यदि मेरे पास अध्ययन करने का समय होता था कि मैं जल्दी से वचन को ले पाता, मैं उन्हें आपके लिए बता सकता, देखिए जो मेरे मन में आता है। पौलुस वहाँ पर बोलता है, कहा कि हम अन्य जातियों के लिए यह ध्यान रखें कि हम जिस तरह से चले हैं और हमने जो किया है, समझे, क्योंकि यदि परमेश्वर ने पहली डाली को न छोड़ा तो देखो, और हम तो अभी इसमें साटे गए हैं, देखो। और इज़राइल जो कुछ समय के लिए अंधा था, उसने कहा, बस एक ऋतु के लिए इज़राइल को अंधा कर दिया गया था, यह सही बात है, लेकिन उनकी आंखों से पर्दा उठ जाएगा, और ये तब होता है कि जब अंतिम अन्य जाति परमेश्वर के राज्य में जन्म लेता है, तब इज़राइल की आंखों से उनका पर्दा उठ जाता है और वे कहेंगे, यह वो मसीहा है जिसके लिए हमने राह देखी थी, यह सही है। लेकिन अन्य जातियों का द्वार बंद है, संदूक बंद है, उस समय पर अन्य जातियों के लिए अब और अनुग्रह नहीं बचता है। अब मैं एक प्रश्न पर बहुत सा समय लेता हूँ, और कोई तो कहेगा, अब आप मेरे प्रश्न तक नहीं पहुँचेंगे, ठीक है, हम जल्दी करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे नहीं ले सकते हैं। तो ठीक है, यह एक लंबा प्रश्न है और इसका हर एक अंश महिला ने पूछा है या पुरुष ने पूछा है या जो भी हो, ये सही है। क्या यह सच नहीं है कि प्रभु यीशु पूरी दुनिया के लिए नहीं मरा? इसका मतलब दुनिया में हर किसी के लिए, लेकिन बल्कि अब मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन ये स्त्री है, पुरुष या स्त्री है, जो कोई भी हो, ऐसा दिखता है जैसे एक स्त्री ने लिखा है, लेकिन इसके लिए बल्कि दुनिया के हर एक भाग के लिए जिन्हें पिता ने उसे दिया, वे लोग जो जगत की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने अनंत जीवन के लिए ठहराए थे, अपने खुद की इच्छा की सुमति के अनुसार उन्हें चुना है। बिल्कुल यह सही बात है, यह बिल्कुल सही बात है। यीशु जिसके लिए मरा, ना ही सिर्फ वो उद्देश्य पूर्व है। आइए देखते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि वे पढ़ते हैं, इस पर एक प्रश्न आता है। वचन निसंदेह हमें बताता है कि ये वे लोग हैं जो बचाए नहीं जाएंगे, इसलिए यह बिल्कुल सही बात है। वचन हमें बताता है कि ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ठहराया है कि वे दोषी ठहराए जाएं। क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे जिससे कि यह हमेशा ही आपके दिमाग से बाहर रहे? तो ठीक है, आइए अब हम यहूदा की किताब की ओर जाएं। यहूदा यहाँ बोल रहा है, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन पवित्र किए हुए के नाम जो परमेश्वर पिता में और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं और बुलाए गए हैं। देखा कि वो किसे संबोधित करता है? न ही पापी को, न केवल सुसमाचारक की सेवा को, लेकिन पवित्र और बुलाए हुए लोगों के लिए। देखो, वे जो पहले से ही राज्य में हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, मैं तुम्हें सामान्य उद्धार के बारे में लिखने के लिए पूरा परिश्रम करता हूँ। मेरे लिए ये आवश्यक था कि मैं तुम्हें लिखूं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंपा गया था, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य अनजाने से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था, कैसे और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुच्पन में बदल डालते हैं। पहले से ठहराए गए ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिंहासन पर वहाँ बैठकर और कहा, मैं इस मनुष्य को बचा लूंगा, मैं उस मनुष्य को नाश करूंगा। ये ऐसा नहीं था। परमेश्वर मरा, और जब यीशु मरा तो प्रायश्चितता ने हर एक व्यक्ति के लिए सारी पृथ्वी को ढाक दिया। लेकिन परमेश्वर पूर्व ज्ञान के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वो करेगा, उसकी इच्छा नहीं है कि कोई भी नाश होना चाहिए। वो चाहता था कि हर कोई बच जाए, यही उसका अनंत उद्देश्य था। लेकिन यदि वो परमेश्वर था तो वो जानता था कि कौन बचाया जाएगा और कौन नहीं। यदि वो नहीं जानता तो वो अनंत परमेश्वर नहीं था। तो बाइबल यही सिखाती है कि हम कर सकते, यदि हमारे पास, या रोमियो के 8वें अध्याय में जाने का समय होता था, और आप इसे पढ़ सकते हैं, रोमियो 9वां अध्याय, बाइबल में बहुत से और भी स्थान में है, इफिसियों 1वां अध्याय, और आप देख सकते हैं कि परमेश्वर का चुनाव, जिससे कि ये पक्का हो सके, परमेश्वर ने बिना किसी शर्त की वाचा बांधी। उसने यीशु को उन लोगों के लिए मरने के लिए भेजा जिन्हें वो पहले से जानता था, समझे? ना ही सिर्फ कहने के लिए, ठीक है, आप कहते हैं कि परमेश्वर नहीं जानता कि वो बच जाएगी या नहीं। परमेश्वर जानता था कि संसार के आरंभ होने से पहले आप बचेंगे या आप नहीं बचेंगे, या तो वो परमेश्वर नहीं था। क्या आप जानते हैं अनंत शब्द का अर्थ क्या होता है? उसमें देखें, शब्दकोश में देखें और पता लगाएं कि अनंत शब्द का क्या अर्थ है। क्यों? वो हर एक पिस्सू को जानता था जो कभी धरती पर होगा, हर एक मक्खी, हर एक मच्छर, हर एक कीटाणु को। वो इसे जानता था इससे पहले वे अस्तित्व में आए, या तो वो परमेश्वर नहीं था। निश्चय ही वो इसे जानता था। तो ठीक है, फिर वहाँ पर परमेश्वर यह नहीं कह सकता, मैं तुम्हें लूंगा और तुम्हें नरक में भेजूंगा, और मैं तुम्हें लूंगा और तुम्हें स्वर्ग में भेजूंगा। परमेश्वर चाहता था कि आप दोनों ही स्वर्ग जाएं, लेकिन पूर्व ज्ञान के द्वारा वो जानता था कि एक कपटी होगा और जो दूसरा है सज्जन और मसीही होगा। देखा, इसलिए उसे यीशु को मरने के लिए भेजना था, उस मनुष्य को बचाने के लिए जिसे वो पहले से जानता था, जो बचना चाहता था। आप इसे समझे? अब यहाँ देखें, वचन संदेह पूर्वक हमें बताते हैं कि ये वे लोग हैं जो बचाए नहीं जाएंगे। इसलिए यदि प्रायश्चितता सारी आदम की जाति को ढापती है, और कुछ नष्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा या प्रबंध का लाभ नहीं उठाया, ना ही शक्ति आजाद जो होंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्यों से अधिक शक्तिशाली ताकत होगी। ऐसा होगा, वो व्यक्ति अब इस दूसरे प्रश्न पर पूछ रहा है, क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ताकत नहीं होगी? नहीं मेरे भाई या बहन, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी अधिक शक्तिशाली नहीं। परमेश्वर के न्याय के उस अनंत उद्देश्य से मनुष्य की इच्छा की तुलना कभी नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अब आपका पहला प्रश्न सही था, आपका दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता मित्र, क्योंकि देखो उसे, देखो जिस तरह से यह यहाँ लिखा गया है। देखो, क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली नहीं होगी? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। मनुष्य की इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ताकत कैसे हो सकती है? और मनुष्य अपनी इच्छा रखने के शारीरिक अवस्था में जो वह चाहता है, जो एक अनंत सिद्ध परमेश्वर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अनंत परमेश्वर जिसका उद्देश्य सिद्ध है, आप भला कैसे कह सकते हैं कि यहाँ नीचे एक शारीरिक मनुष्य, चाहे वो कितना भी धर्मी क्यों न हो, और वो हो सकता है, उसके उद्देश्यों की तुलना इससे नहीं की जा सकती उस अनंत और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्देश्य से। हाँ हाँ, अच्छी बात है बहन, यह सही है। ओह ठीक है, तब मैंने इसे गलत पढ़ा है, देखिए तो ठीक है। हाँ, तब आप बिल्कुल सही हो बहन, मैं नहीं जानता था कि यह आपका प्रश्न था, तो ठीक है। लेकिन देखिए, मुझे मेरे पास यहाँ पर ये है, देखो, अब मुझे देखने दो। आदम की सारी जाति को ढाक देती है और कुछ नष्ट हुए थे क्योंकि उन्होंने इसके प्रबंध का अपने आप के लिए लाभ नहीं उठाया। क्या मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनंत योजनाओं और उद्देश्य से अधिक शक्तिशाली ताकत नहीं होगी? देखिए, मैंने वहाँ आपके विचार का गलत अर्थ निकाला था। जी हाँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनंत उद्देश्य, तो ठीक है, यह बात को सुलझा देता है। मैं सोचता हूँ कि हर कोई इसे समझता है। आप समझते हैं तो अपने हाथ ऊपर करें। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। निश्चित रूप से मनुष्य जितना कर सकता है उससे कहीं ऊपर, कहीं अधिक ऊपर होगा। अब मैं 28वें अध्याय में पानी के बपतिस्मा पर प्रकाश को नहीं समझता, मती के 19वें पद में इसका अर्थ क्या है? तो हो सकता है, अब हो सकता है इसमें मुझे ज्यादा नहीं बल्कि सिर्फ एक मिनट लगेगा, और यदि आप चाहें तो कोई तो मेरे साथ मती के 28वें अध्याय और 19वें पद को खोले और हम जान जाएंगे कि वो व्यक्ति क्या। 25। अब यदि आप इसके साथ बने रहेंगे तो ये आपको मजबूत करेगा, ये अच्छा है। आप देखिए, ये सुसमाचारक नहीं है, लेकिन यह अब यहाँ पर लोग कहने की कोशिश करते हैं बाइबल में एक विरुद्ध वचन है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई तो मती 28:19 को खोले, या नहीं, मैं चाहता हूँ कि कोई तो मती 28:19, मैं चाहता हूँ कि कोई प्रेरितों के काम 2:38 को खोले। भाई नेविल, आपके पास वहाँ आपकी बाइबल है, और मैं चाहता हूँ कि अब आप अपने लिए पढ़ें, और मैं आपको बाइबल में एक सख्त विरुद्ध वचन को दिखाऊंगा, और जो उस बाइबल, लोग कहते हैं बाइबल स्वयं का विरुद्ध वचन नहीं करती, मैं चाहता हूँ कि आप इसका सोच विचार करें, और यह प्रोफेसरों को निराशामय बना देता है, लेकिन यह साधारण है। अब मैं मती 28:19 पढ़ूंगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ें, और आप में से कुछ प्रेरितों के काम 2:38 के साथ इसे तैयार रखें। मैं 18वें पद से आरंभ करूंगा, यह मती का आखिरी अध्याय है। और यीशु ने आकर और अपने चेलों से कहा, उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ मुझे दी गई है। पिता की सामर्थ कहाँ है? यदि स्वर्ग और पृथ्वी की सारी सामर्थ यीशु को दी जाती है, तब तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हो गया। क्या वो नहीं हुआ, या उसने बस एक कहानी को बताया? क्या वो मजाक कर रहा था, ये उसका मतलब था? क्या आप विश्वास नहीं करते कि उसका मतलब ये था? तो ठीक है, यदि सारी सामर्थ उसे दी गई है, तब परमेश्वर की सामर्थ कहाँ है? वो परमेश्वर था, यह बिल्कुल सही है। वहाँ इसमें केवल यही एक चीज है, बस इतना ही था। देखो, वो परमेश्वर था, या तो वहाँ कोई और बैठा हुआ है जिसके पास कुछ सामर्थ थी, अब उसके पास ये नहीं है। देखा, तो आप इसे उलझा नहीं सकते हैं। हम यहाँ ठीक इसी चीज पर बात करेंगे, तो ठीक है। जो स्वर्ग और पृथ्वी में की सारी सामर्थ है, स्वर्ग में और पृथ्वी में, इसलिए जाओ, सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, मानना सिखाओ। देखो, मैं जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। प्रेरितों के काम 2:38, अब कोई पढ़े, बस एक मिनट रुकना। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38वां पद, अब बहुत ही ध्यान से सुने और बस धीरज रखें, और अब हम देखेंगे। अब यह 10 दिन बाद की बात है, यीशु ने अब उनको बताया, उसके बाद मत्ती 28:19, इसलिए जाओ, सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। अब पतरस 10 दिन के बाद उन्होंने कभी दूसरे उपदेश का प्रचार नहीं किया। वे यरूशलेम के ऊपरी कोठरी में चले गए और वहाँ 10 दिन तक पवित्र आत्मा के आने की बात जोते रहे। कितने लोग ये जानते हैं, इस स्थान पर यहाँ पतरस है, पतरस के पास राज्य की चाबियां हैं। तो ठीक है, हम देखेंगे कि ये क्या करता है। मती या मेरा मतलब प्रेरितों के काम 2, आइए 36वां पद लें। इसलिए अब इसराइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु और मसीह भी, कोई आश्चर्य नहीं, स्वर्ग और धरती की सारी सामर्थ उसे दी गई थी। अब जब उन्होंने इसे सुना तो उनके हृदय छिद गए और पतरस से और बाकी के प्रेरितों से कहा, लोगों और भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उत्तर दिया, पतरस ने उनसे कहा, पश्चाताप करो, तुम में से हरेक और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अब एक विरोधाभास है, मती ने कहा नाम में बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और पतरस ने प्रेरितों के काम 2:38 में कहा 10 दिन के बाद पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। उसके बाद अगली बार बाइबल में पश्चाताप के विषय में बोला गया, मेरा मतलब बपतिस्मा के विषय में बोला गया। यह प्रेरितों के काम का वो 8वां अध्याय है जब फिलिपुस ने वहाँ पर जाकर और लोगों को प्रचार किया, उन सामरी लोगों को, और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और उन्होंने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। अगली बार इसके बारे में बताया गया था जब अन्य जातियों ने इसे पाया था, प्रेरितों के काम 10:49। और जब पतरस ने इसके विषय बोला, देखो पवित्र आत्मा उन पर उतरा, वे जिन्होंने उन्हें सुना, क्योंकि उन्होंने उन्हें अन्य जुबान में बोलते सुना और परमेश्वर को ऊंचा उठाया। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है, यह देखते हुए कि जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया है जैसे हमने शुरुआत में पाया था। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अब मुझे यहाँ कुछ लेना है, बस आपको कुछ तो दिखाने के लिए जिससे कि आप इसे भूल न जाएं। एक छोटा सा चित्रण करने जा रहा हूँ, मैं बनाऊंगा कितनी पीढ़ी संसार में लोगों की कितनी राष्ट्रीयताएं या जाति है। वहाँ पर 3 हैं, हाम, शेम और यपेत के लोग। कितने लोगों को पता है हम नूह के उन 3 पुत्रों से आते हैं, हाम के लोग, शेम के लोग, यपेत के लोग एंग्लो सैक्सन हैं, शेम के लोग हैं। 3 पीढ़ियां हैं जो हैं यहूदी, अन्य जाति और आधे यहूदी और अन्य जाति। अब ध्यान दें, जब वो वहाँ और ये हाम है, शेम, हाम और ये पेट। अब पहली बार बपतिस्मा के बारे में कभी बात की गई थी, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसके बारे में बात की थी। कितने लोग जानते हैं कि ये सच है। तो ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और यूहन्ना ने लोगों को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, यह आज्ञा देते हुए कि मन फिराओ और परमेश्वर के साथ सही कर लो और अपनी संपत्ति बेचकर और कंगालों को पालन पोषण करो और सिपाही उनके धन से संतुष्ट हों और परमेश्वर के साथ संबंध ठीक कर लें। कितने लोग ये जानते हैं। और उसने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, न ही जल को छिड़क कर, न ही जल को उढ़ेल कर, लेकिन उन्हें जल में डुबोया। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो यहाँ शब्दकोश है, देखें कि क्या यह बैप्टिजो नहीं है, जो है बपतिस्मा देना, डुबाकर नीचे डालकर दफनाना। अब पहली बार बपतिस्मा के बारे में कभी बात की गई थी तो वहाँ था, दूसरी बार बपतिस्मा के बारे में बात की गई थी, यीशु ने इसकी आज्ञा दी थी, मती 28:19। अगली बार जब बपतिस्मा की बात की गई थी वो प्रेरितों के काम 2:38 था। अगली बार जब बपतिस्मा की बात की गई थी वो प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय में था। अगली बार जब बपतिस्मा की बात की गई थी वो प्रेरितों के काम का वो 10वां अध्याय था। और फिर हम उस समय से आए हैं जहां यीशु ने कहा, यहां पर इसलिए तुम जाकर सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। अब आइए पहले इस वचन को स्पष्ट करें। मैंने आपको वो बताया है, बाइबल में ऐसा कोई भी वचन नहीं है जो दूसरे वचन के विपरीत हो। मैं चाहता हूँ कि आप इसे मेरे पास लाकर दिखाएं। मैंने इसे 26 साल से पूछा है और मुझे अभी तक यह नहीं मिला है। ऐसा कोई वचन नहीं है जो इसके विपरीत हो। यदि यह इसका खंडन करता है तो यह एक मनुष्य का लिखा हुआ काम है। नहीं श्रीमान, बाइबल में कोई विपरीत वचन नहीं है। अब यह आपने कहा उसके विषय में क्या? यहाँ यीशु खड़ा हुआ कह रहा है, इसलिए तुम जाकर सभी राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और पतरस ने तब सीधे पीछे मुड़कर कहा, तुम में से प्रत्येक जन प्रायश्चित करे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। वहाँ पर आपका विपरीत वचन है, ये ऐसा दिखाई देता है। अब यदि आप शारीरिक दिमाग से पढ़ते हैं और ना ही खुले हृदय से, तो यह एक विपरीत वचन होगा। लेकिन यदि आप इसे खुले मन से पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा ने इसे ज्ञानियों और बुद्धिमान की आंखों से छिपा कर रखा है। यीशु ने ऐसा कहा और इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया और इसे उन बालकों पर प्रकट किया है जो सीखेंगे। यदि आपके पास एक मन है और एक स्वार्थी मन नहीं है, लेकिन सीखने के लिए एक इच्छुक हृदय है, तो पवित्र आत्मा आपको इन बातों को सिखाएगा। अब यदि यह तुलना नहीं करता है, आप कहते हैं आप कैसे जानते हैं कि आप सही हैं? तो ठीक है, यह बाकी के वचनों के साथ तुलना करता है। यदि आप नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ एक पूरी तरह से विपरीत वचन मिलता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह मत्ती का आखिरी अध्याय है। मैं इसे एक छोटे रूप में लूंगा ताकि आप में से हर कोई, बच्चे भी इसे समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप एक प्रेम कहानी को पढ़ते हैं और उसके आखिरी में कहा गया, और मैरी और जॉन हमेशा के लिए खुश रहने लगे, तो ठीक है, आप सोचेंगे कि जॉन और मैरी कौन थे जो बाद में हमेशा खुश रहने लगे थे। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि जॉन और मैरी कौन हैं, अच्छा होगा कि आप किताब के पहले भाग पर पीछे जाएं और पता करें कि जॉन और मैरी कौन हैं, फिर यहाँ वापस जाकर और पता लगाएं कि मैरी कौन थी और वो किस परिवार से है, और जॉन कौन था और वो किस परिवार का था, और उसका क्या नाम था, और उनका विवाह कैसे हुआ, और इसके बारे में सब कुछ पता करें। क्या यह सही है? यही बात यहाँ बाइबल पढ़ने में भी लागू होती है। कब? देखो, यीशु ने कभी भी नहीं कहा जाकर लोगों को पिता के नाम में, पुत्र के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। जिस तरह से त्रिएकतावादी के लोग बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल में इसके लिए कोई वचन नहीं है। उसने कभी भी नहीं कहा नामों में, NAMES, नामों पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के। उसने कहा NAME, नाम में, एक वचन। वहाँ अपनी बाइबल को देखें और पता करें कि क्या यह सही है। मत्ती 28, नाम में, ना ही पिता के नाम में, पुत्र के नाम में। इसी तरह से एक त्रिएकता का प्रचारक बपतिस्मा देता है पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में। ऐसा बाइबल में है भी नहीं। फिर नाम में आपने कहा तो ठीक है, तब पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, फिर वहाँ पर कोई एक नाम को होना है, तो ठीक है। क्या पिता एक नाम है? कितने जानते हैं कि पिता एक नाम नहीं है? पिता एक उपाधि है, पुत्र एक नाम नहीं है। कितने जानते हैं पुत्र एक नाम नहीं है? यहाँ पर कितने पिता हैं? अपना हाथ ऊपर उठाएं। यहाँ कितने पुत्र हैं? अपने हाथ को ऊपर उठाएं। तो ठीक है, आप में से किसका नाम पुत्र है? आप में से किसका नाम पिता है? तो ठीक है, पवित्र आत्मा कोई नाम नहीं है, पवित्र आत्मा वो है जो ये है। यहाँ कितने लोग मनुष्य हैं? अपना हाथ ऊपर उठाएं। देखा, आप वहाँ हो। पवित्र आत्मा वो है जो ये है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसमें से कोई भी नाम नहीं है, इसमें से कोई नाम नहीं है। तो ठीक है, तब यदि उसने कहा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम पीछे जाकर और पता करें कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है। आइए हम पीछे मत्ती के पहले अध्याय की ओर जाएं, देखेंगे ये व्यक्ति कौन था जिसके नाम में हम बपतिस्मा लेने वाले हैं। और अब हम मत्ती के पहले अध्याय और 18वें पद से आरंभ करते हैं। आप सभी ध्यान से पढ़ें। अब आपने प्रश्न पूछा है, मैं यहाँ छोटा सा चित्रण करना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ तीन बातों को रखने जा रहा हूँ, जिससे कि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। चित्रण करके ये बाइबल और किताबें जो चित्रण करने के लिए है, तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ओर ध्यान से देखें और हरेक अब मेरा अनुसरण करें। अब यह यहाँ पर परमेश्वर पिता है, यह यहाँ पर परमेश्वर पुत्र है, यह यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा है। अब कितने लोग समझ रहे हैं? आप इसे मेरे पूछने के बाद कहें, यह यहाँ नीचे कौन है? पवित्र आत्मा। यह यहाँ पर कौन है? यह यहाँ पर कौन है? अब इसी तरह से त्रिएकतावादी विश्वास करते हैं। देखिए, जो हमें मूर्ति पूजक बनाता है, बस उतना ही परिपक्व जितना ये हो सकता है। यहूदी, यही कारण है कि आप एक यहूदी के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। उसने कहा, आप परमेश्वर को तीन टुकड़ों में काटकर एक यहूदी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से नहीं, न ही आप मुझे दे सकते हैं। देखा नहीं श्रीमान, वो एक परमेश्वर है। यह बिल्कुल ऐसा ही है, ना ही तीन परमेश्वर। अब ध्यान दीजिए, यह कितना साधारण है। अब हम पता लगाएंगे, अब कौन, यह है कौन। अब कुछ बोलते हैं, परमेश्वर वो पुत्र, क्या यह सही है, यह पुत्र है तो ठीक है। उसके बाद उसका पिता परमेश्वर है, क्या यह सही है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसका पिता परमेश्वर है, अपना हाथ ऊपर करें। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह का पिता है, तो ठीक है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। अब हम ये देखने के लिए पीछे जा रहे हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कौन है, जो कि बच्ची ने कहा के नाम में बपतिस्मा देना। देखो नाम, अब नामों नहीं है, क्योंकि वे नामों नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ कोई नाम नहीं है। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, इससे पहले कि वे एक साथ आएं, वो परमेश्वर उस पिता से एक बालक के साथ पाई गई। क्या बाइबल ऐसा कहती है? बाइबल क्या कहती है? वो पवित्र आत्मा से एक बालक के साथ पाई गई थी। तो इनमें से कौन सा उसका पिता है? अब बाइबल ने कहा कि यह उसका पिता है, और यीशु ने कहा कि यह उसका पिता था। अब उसका पिता कौन सा है? अब क्या उसके दो पिता थे? तो अब इसके विषय में क्या, यदि उसके दो पिता होते थे तो वह एक नाजायज बालक होता। अब आइए हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। सो उसका पति यूसुफ, जो धर्मी मनुष्य होने पर उसे सार्वजनिक रूप से बदनाम करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। लेकिन जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो देखो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया, यह कहते हुए, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, उसके लिए जो उसके गर्भ में है उसकी ओर से है। किसकी ओर से? पवित्र आत्मा। तो ठीक है, पिता उसका पिता कैसे हो सकता है, और पवित्र आत्मा एक ही समय में उसका पिता कैसे हो सकता है? अब तब तो उसके दो पिता थे, यदि यह बात सही है तो। नहीं श्रीमान, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है, पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति हैं, या तो उसके दो पिता थे। देखो हमें कुछ समय बाद पता चलता है कि जॉन और मैरी कौन है, तो ठीक है, हम पता करेंगे कि पतरस और मती एक दूसरे का खंडन करने की कोशिश कर रहे थे या नहीं। देखें कि क्या वचन स्वयं का खंडन करता है। यह आत्मिक समझ की कमी की वजह से है, यह सही है। लेकिन जब उसने इन पर विचार किया, मेरे पास यह एक वचन है, 20वां पद, अब 21वां, और वो एक पुत्र को जन्मेगी, इस व्यक्ति को। इसमें से कौन सा था? एक व्यक्ति, परमेश्वर। और तू उसका नाम बुलाएगी, क्या? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यह सब किया गया था जिससे कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो सके। कहता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, और वे उसका नाम इमैनुअल बुलाएंगे, जिसका अनुवाद है परमेश्वर हमारे साथ। सो जॉन और मैरी कौन थे जो बाद में हमेशा खुश रहते थे? वो कौन था जिसने कहा, इसलिए तुम जाओ सारे राष्ट्रों को शिक्षा दो, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता कौन था? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम। निश्चय ही ऐसा था, निश्चय ही। इसमें कोई विपरीत वचन नहीं है, जरा भी नहीं। यह तो बस वचन को स्पष्ट करता है। वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा था। परमेश्वर इमैनुअल हमारे साथ वास कर रहा था, एक शरीर में निवास किए हुए था, जिसे यीशु बुलाया गया। अब एकात्मकता, कलीसिया की एकात्मकता की शिक्षा, मैं निश्चित रूप से इससे असहमत हूँ, यह सोचते हुए कि यीशु एक है, जैसे आपकी उंगली एक है। उसके पास एक पिता होना था, यदि वो नहीं होता तो वो उसका अपना पिता कैसे हो सकता था? और यदि उसका पिता एक व्यक्ति था, जैसा कि श्री एकतावादी कहते हैं, तो वो दो पिताओं में से एक नाजायज जन्म से पैदा हुआ था। तो आप देखते हैं, वाद विवाद करके आप दोनों ही गलत हैं। देखा, लेकिन इसकी सच्चाई यह है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों एक ही व्यक्तित्व हैं, देह के तंबू में वास करने से, ताकि जगत से पाप उठा ले। यह बिल्कुल सही है, परमेश्वर हमारे साथ अब इसलिए जब मत्ती 28:19 अब आप वचनों में खोजें और जब आप बाइबल में एक व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं, अब इस बारे में सोचें, अब इसे अपने ऊपर से न जाने दें, जहां बाइबल में एक व्यक्ति को कभी भी पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। वापस मेरे पास आकर और मुझे बताओ कि मैं एक ढोंगी हूँ और मैं अपनी पीठ पर एक तख्ते को लगाऊंगा और शहर भर में घूमूंगा। यह उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक वचनों में नहीं है, लेकिन बाइबल में का प्रत्येक व्यक्ति का यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा हुआ था। आप कहते हैं एक मिनट रुकना प्रचारक, यूहन्ना के बारे में क्या? उसने किसी भी नाम से बपतिस्मा नहीं लिया। तो ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हुआ था। आइए उस प्रेरितों के काम की ओर जाएंगे। 19वां अध्याय यही है जहां हम यूहन्ना के चेलों को देखते हैं। हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था। वहां तब से अब तक हम इस झुंड को यहां नहीं पाते हैं। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय, और आइए हम अब पढ़ना आरंभ करें और हम यूहन्ना के चेलों को पाते हैं। और ऐसा हुआ जब अपुल्लोस, जो एक वकील था, परिवर्तित हुआ, कुरिन्थियों में था, पौलुस ऊपरी तटों में से होते हुए गुजर रहा था इफिसुस के, वो कुछ चेलों को पाता है। वे यीशु के अनुकरण करने वाले थे। यदि आपने अभी पिछले अध्याय पर ध्यान दिया है, वहाँ पहले वे बहुत ही अच्छे समय को बिता रहे थे। इतना तक वे चिल्ला रहे थे और आनंदित हो रहे थे कि ते लोग ये सच को जानते हैं, और अक्विला और प्रिस्किल्ला उस सभा में भाग ले रहे थे, और पौलुस और सिलास को पीटा गया और कोड़े लगाए गए और बंदी गृह में डाल दिए गए थे। क्या यह सही है? और उन्होंने यहाँ आकर एक्विला और प्रिस्किल्ला को पाया, और उनके पास अपुल्लोस नाम के एक बैप्टिस्ट प्रचारक के द्वारा वहाँ पर बेदारी थी, जो वचनों के द्वारा साबित कर रहा था यीशु ही मसीह था। अब पौलुस को वो मिलता है। पौलुस ऊपरी तटों में से होते हुए गुजर रहा था इफिसुस के, वो कुछ चेलों को पाता है। उसने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया जब से तुमने विश्वास किया है? अब आप जो प्रिय बैप्टिस्ट मित्र हैं, क्या यह आपके धर्म ज्ञान के तहत उस भरोसे को खत्म नहीं करता? जब आपने कहा जब आपने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा को पाया, लेकिन पौलुस इन बैप्टिस्ट लोगों से पूछना चाहता था, क्या आपने पवित्र आत्मा को पाया है जब से आपने विश्वास किया? अब देखिए उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने उससे कहा, हम जानते भी नहीं कि कोई पवित्र आत्मा भी है। और उसने उनसे कहा, किसका? अब यदि आप यहाँ यूनानी शब्द कोश को लेना चाहते हैं, तो ये आपको दिखाएगा तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था, किस पर आपका बपतिस्मा हुआ था। और उन्होंने उससे कहा, यहाँ पहले यूहन्ना के नीचे यूहन्ना ने हमें बपतिस्मा दिया। अब मैं पूछना चाहता हूँ, यदि आपने वो बपतिस्मा लिया होता था तो क्या आप इससे संतुष्ट होते? वही मनुष्य जो यीशु को नदी में ले गया और यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, उसी मनुष्य ने इन लोगों को बपतिस्मा दिया था। यह एक बहुत अच्छा बपतिस्मा है, न ही जल का छिड़काव, न ही जल का उंधेला जाना, लेकिन पुराने कीचड़ भरे यर्दन में उसी स्थान पर डुबकी लगाकर यीशु का बपतिस्मा हुआ था। उसके बारे में सोचें। पौलुस ने कहा, क्या तुमने पवित्र आत्मा को पाया जब से तुमने विश्वास किया? उन्होंने कहा, हम जानते क्या कोई पवित्र आत्मा है भी या नहीं। उसने कहा, तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? उन्होंने कहा, हमने बपतिस्मा लिया है। तुम्हारा बपतिस्मा कैसे हुआ था? यूहन्ना के निमित्त। अब देखिए पौलुस ने क्या कहा, यहाँ देखें। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा बपतिस्मा यूहन्ना के निमित्त हुआ था। और उन्होंने और फिर पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने वास्तव में बपतिस्मा दिया पश्चाताप करने के लिए, कहते हुए लोगों से उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए जो उसके बाद आने वाला है, अर्थात यीशु मसीह पर। देखो, यूहन्ना ने केवल पश्चाताप के निमित्त बपतिस्मा दिया, लेकिन यीशु के नाम में पानी का बपतिस्मा पापों की क्षमा के लिए है। तब प्रायश्चितता नहीं हुई थी, पाप मिटाए नहीं जा सके थे। अब यह तो सिर्फ एक विवेक का उत्तर था, जैसे नियम के तहत लूका 16:16 ने कहा, यूहन्ना तक नियम और भविष्यवक्ता थे, तब से लेकर राज्य का प्रचार किया गया है। अब देखो और देखो, और पौलुस ने कहा, अब देखें क्या तुमने पाया, पांचवा पद, और जब उन्होंने यह सुना तो उन्होंने फिर से यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया। ये सही है, तब ये लोग प्रेरितों के काम 2 के लोग, उन्होंने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। यहूदियों को यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया था, अन्य जातियों को यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया गया था, और पूरी बाइबल में हर एक व्यक्ति ने यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। अब एक ऐसा स्थान दिखाओ जहां किसी और ने कभी किसी अन्य तरीके से बपतिस्मा लिया हो, और मैं यहां पर ठीक वापस जाकर और आपको दिखाऊंगा कि कैथोलिक कलीसिया जहां पर इस बात को स्वीकार करता है और कहता है कि आप इस बात को मानते हैं, और कहा कुछ प्रोटेस्टेंट बचाए जा सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ कैथोलिक सिद्धांत हैं, जैसे कि बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, कि पवित्र कैथोलिक कलीसिया के पास अधिकार है कि उस धार्मिक क्रिया को यीशु के नाम से बदलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा कर दे, और प्रोटेस्टेंट कलीसिया इसे स्वीकार करता है। यह नहीं है, मैं बाइबल के साथ बने रहता हूँ, मुझे बाइबल पर विश्वास करना है। आप कहते हैं भाई ब्रैनम क्या आप लोगों को बपतिस्मा लेने का आदेश देते हैं? बिल्कुल, पौलुस ने यह किया। अब देखें, आइए हम गलतियों 1:8 को देखें और जानें कि पौलुस ने क्या कहा। यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो, वहाँ आप हैं। यदि हम या कोई भी दूत, और पौलुस वही मनुष्य लोगों को फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी, मेरे भाई आपने जो बपतिस्मा लिया है उससे कहीं बेहतर बपतिस्मा लिया, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु का अपना चचेरा भाई था। दूसरा चचेरा भाई यर्दन नदी में अपने चचेरे भाई को बपतिस्मा दिया और सीधे पीछे मुड़कर और यूहन्ना के चेलों को बपतिस्मा दिया, और यीशु ने कहा वो काम नहीं करेगा, मतलब पौलुस ने इसे कहा, और यीशु के नाम में फिर से बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी इससे पहले उन्हें पवित्र आत्मा मिल सके। उसके बाद वे चिल्ला रहे थे और परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और अच्छे समय को बिता रहे थे। उनके पास एक बड़ी बेदारी थी और बाइबल के द्वारा उनके धर्म शास्त्र के साथ साबित कर रहे थे कि यीशु ही मसीह था। कितने लोग जानते हैं कि यह वचन है 18वां अध्याय निश्चित रूप से ऐसा है, वहाँ आप हैं, तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ मुख्य बात को बताता हूँ। अब वो कभी भी क्रम से बाहर नहीं गया, लेकिन लूका में मती 16वां अध्याय यीशु जब वे पहाड़ से नीचे उतरे, वो कहता है लोग मुझ मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? कोई कहता है तुम एलिया हो, और कुछ कहते हैं कि तुम भविष्यवक्ता हो, और कुछ कहते हैं कि तुम यह वो हो। उसने कहा परंतु तुम क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। देखो धन्य हो तुम शमोन बार जोना के योना के पुत्र, मांस और लहू ने इसे कभी भी तुझ पर प्रकट नहीं किया, आमीन। देखो इसका आत्मिक प्रकाशन आना ही है। मांस और लहू ने हाबिल को कभी नहीं बताया कि वो गलत था, केन के लिए कि वो गलत था। हाबिल को यह कभी भी नहीं बताया कि केन गलत था, लेकिन यह एक प्रकाशन था जो हाबिल के पास था, यह लहू था। हम कुछ ही मिनटों में उस प्रश्न पर आ रहे हैं, यह लहू था ना ही फल जो हमें अदन की वाटिका में ले गया, वो लहू था। और हाबिल आत्मिक प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर से प्रकट हुआ था कि यह लहू था, और वो विश्वास के साथ इब्रानियों 11:1 कहता है उसने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जिसे परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकार कर लिया, वहाँ आप हैं। देखिए उसने इसे विश्वास के द्वारा प्रकाशन के द्वारा भेंट चढ़ाया। अब देखो मांस और लहू ने इसे तुम पर प्रकट नहीं किया प्रभु यीशु की ओर सीधा जाते हुए, लेकिन मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है इसे तुम पर प्रकट किया है, और इस चट्टान पर यीशु मसीह का प्रकाशन। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके विरुद्ध प्रबल नहीं हो सकते, यही है जो उसने कहा आत्मिक प्रकाश। और मैं कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं तुझे राज्य की चाबियां दूंगा, और जो भी हो, क्योंकि तुम्हारे पास यहाँ और स्वर्ग के बीच एक आत्मिक खुला हुआ माध्यम या चैनल है, मांस और लहू तुमने कभी धर्म विद्यालय में नहीं लिया, तुमने कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली, तुमने कभी किसी धर्म शास्त्र की शिक्षा नहीं ली, लेकिन तुम परमेश्वर पर निर्भर थे और परमेश्वर ने इसे तुम पर प्रकट किया, और यह बिल्कुल स्पष्ट वचन है जो इसे एक साथ बांधता है। मैं कहता हूँ कि तुम पतरस हो, यह सही है, और मैं तुम्हें चाबियां दूंगा, और जो कुछ तू धरती पर बांधेगा उसे मैं स्वर्ग में बांधूंगा, जो तू धरती पर खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलूंगा। और पतरस पेंटिकॉस्ट के दिन बोलने वाला वक्ता था, जब वे सब बोलने से डर गए थे तो उसने बोला और कहा हे यहूदिया के लोगों, और तुम जो यरूशलेम में रहते हो, इस बात को तुम जान लो और मेरे वचनों पर कान लगाओ, ये नशे में नहीं है जैसा कि तुम समझ रहे हो, यह देखते हुए कि यह दिन का तीसरा पहर है, लेकिन यह वही है जो भविष्यवक्ता योएल ने इसके विषय में कहा था, यह अंत के दिनों में पूरा होगा। परमेश्वर यूं कहता है, मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और मेरे दासों पर, मेरी दासियों पर अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा, और मैं ऊपर आकाश में और नीचे धरती पर चिन्ह और धुएं और भाप के खंभे दिखाऊंगा। यह प्रभु के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले होगा कि जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो बचा लिया जाएगा। वहाँ आप हैं, ओह प्रभु, मुझे तुम लोगों से कुलपति दाऊद के विषय में खुलकर बातें करने दो। उसने कहा, वो मरा और गाड़ा गया है और उसकी कब्र आज के दिन तक हमारे पास है, इसलिए एक भविष्यवक्ता होने के नाते उसने देखा, उसे अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और मैं ना हटूंगा। और यही नहीं, मेरा शरीर आशा में विश्राम करेगा, क्योंकि वो मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न ही अपने पवित्र जन को सड़ते हुए देखेगा। और दाऊद दोनों मर चुके हैं, उसने कहा, और गाड़ा गया और उसकी कब्र आज के दिन हमारे पास है, लेकिन भविष्यवक्ता होने पर उसने उस धर्मी जन के आने को पहले से देख लिया, जिसे परमेश्वर ने प्रभु और मसीह दोनों ठहराया है। ओह प्रभु, वहाँ आपके वचन हैं, वहाँ वो बात है, ऐसा ही है। अब फिर हम यहाँ देखते हैं कि सही मार्ग और वास्तविक मार्ग और केवल वही मार्ग है जिसे कभी ठहराया गया था। और पतरस के पास चाबियां थी, और जिस दिन उसने प्रचार किया उन्होंने कहा, अब देखो यहाँ पर पहली कलीसिया है, तुम कैथोलिक लोग इसे सुनो, आप कैंपबेल लोग इसे सुने, आप बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट इसे सुने, और आप पेंटिकॉस्टल इसे सुनो, चर्च ऑफ गॉड नाजरीन पिलग्रिम होलीनेस इसे सुने। पतरस के पास चाबियां थी और उसके पास अधिकार था। या तो यीशु ने झूठ बोला, और उसके लिए झूठ बोलना असंभव बात है। दो बातें दृढ़ है, परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। उसके पास चाबियां थी, यीशु ने उसे चाबियां दी जब वो तीसरे दिन पर जी उठा। इस तरह उसके पास मृत्यु और अधोलोक की चाबियां थी, लेकिन राज्य की चाबियां नहीं थी, पतरस के पास थी। यह बिल्कुल सही है। अब देखो, पतरस, तेरे बगल में चाबियां लटकी हुई हैं और तू प्रचार कर रहा है। सवाल आता है, नई कलीसिया के परिवर्तित हुए पहले लोग, प्रारंभिक मसीह कलीसिया, अब कैथोलिक, अब बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, क्या आप न्यू चर्च की शिक्षा पर हैं? देखें कि क्या आप हैं? लोगों और भाइयों, हम क्या कर सकते हैं? पतरस खड़ा हुआ और कहा, पश्चाताप करो, तुम में से हर एक जन। वहाँ देखो लड़के, जिस तरह से तुम उन चाबियों को यहाँ पर रखोगे, मसीह इसे स्वर्ग में रखेगा। तुम में से हर एक जन पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, इसी तरह से आप इसमें शामिल होते हैं अपने पापों की क्षमा के लिए, और तुम पवित्र आत्मा के दान को पाओगे। चाबियां चली गई क्लिक यहाँ पर, और ये चली गई क्लिक वहाँ पर। यही वो कारण है कि यूहन्ना के चेलों को आकर और यीशु मसीह के नाम में फिर से बपतिस्मा लेना था, इससे पहले कि वे स्वर्ग में जा सकें, पवित्र आत्मा को पालें। उसने उसके वचन का पालन किया। तो अब ये आपको उलझन में नहीं डालता है, क्या ये डालता है? समझे, निश्चित रूप से मत्ती 28:19 शीर्षक थे, नाम नहीं। तो ठीक है, हमारे पास और कितना समय है? क्या हमारे पास कुछ और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 15 मिनट और हो सकते हैं? क्या हम ले सकते हैं? तो ठीक है, हम जल्दी करेंगे। मेरे पास यहाँ सबसे नीचे दो प्रश्न हैं, मैं जल्दी से लेना चाहता था। यदि मैं ले सकता तो ठीक इसके साथ ले लेता, तब मैं इसमें से बाकी रविवार सुबह को ले सकता हूँ। क्या केन सर्प के वंश का था? यह एक अच्छा प्रश्न है। यदि ऐसा है, आदम उसके पास जाने के बाद तक हवा गर्भवती क्यों नहीं हुई? वही अगला प्रश्न उसी तरह से है। क्या यह एक वास्तविक पेड़ था जिसमें से हवा ने फल खाया? उसने देखा कि यह खाने के लिए अच्छा है। तो ठीक है भाई बहन, जो भी ये था, आइए उत्पत्ति में वापस जाएं और यहाँ पर कुछ तो पता लगाएंगे। यदि आप चाहें तो आइए उत्पत्ति 3:8 को देखें। तो ठीक है, और अब ध्यान से सुनना। अब मैं कहानी को सामने लाऊंगा। वो सब शुद्ध और पवित्र था, उसमें न कोई पाप था और न कोई मलिनता थी। अब मैं लूंगा आपका यह पहला प्रश्न, पहले लूंगा जीवन में का पेड़, बगीचे के पेड़ में, पेड़ के बीच में, वो पेड़, वो स्त्री थी। अब मैं वचनों के द्वारा आपको ये साबित करूंगा, यदि आप बस कुछ मिनटों के लिए धीरज रखेंगे। हम पहले लेंगे कि वो थी, क्या वो आदम को जानने से पहले गर्भवती हुई या नहीं, या इससे पहले। सुनना, और उन्होंने बगीचे में प्रभु परमेश्वर की चलने की आवाज को सुना, और दिन के ठंडे समय में, और आदम और उसकी पत्नी ने बगीचे के पेड़ों के बीच प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को छिपा लिया। और प्रभु ने आदम को बुलाया और कहा, तू कहाँ है? और उसने कहा, मैंने तेरी आवाज को बगीचे में सुना और मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। अब वो नहीं जानता था कि एक दिन पहले कुछ तो घटित हुआ था। उसे कुछ तो पता चला कि वो नग्न है, और मैंने खुद को छिपा लिया। और उससे कहा, तुझे किसने बताया कि तू नग्न था? क्या तूने उस पेड़ का फल खाया है? पेड़ के फल खाने से उसे एहसास करवाया कि वो नग्न था। जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, यह कोई मजाक नहीं है। मेरा अर्थ मजाक करने के लिए नहीं है, लेकिन यदि सेब खाने से महिलाओं को एहसास होता है कि वे नग्न हैं, तो बेहतर होगा कि फिर से हम सेब को बांट दें। देखा, यह एक नग्न नहीं था, यह एक पेड़ नहीं था, एक सेब जिसे वे खाते हैं। यह यौन संबंध था। देखो, जिस पेड़ के फल के विषय में मैंने तुझे खाने से मना किया, क्या तूने उसका फल खाया है? और आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस पेड़ का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा ने उस स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। गर्भ धारण करने से बहुत पहले, देखो, आदम के द्वारा आदम उसके पास गया और वो गर्भवती हुई और उत्पन्न किया और हाबिल को उत्पन्न किया। लेकिन मैं आपसे सिर्फ शब्द प्रतिशब्द दृष्टिकोण से पूछना चाहता हूँ, अब आपको ये साबित करने के लिए कि वो पेड़ था। प्रत्येक स्त्री एक फलदायक पेड़ है। कितने लोगों को ये पता है? क्या आप अपनी माँ का फल नहीं हो? निश्चय ही आप हो। और फल के बीच में, मतलब पेड़ के बीच में, वो फल जिसे वो नहीं छूती। यदि आप ध्यान दें, क्या यीशु जीवन का पेड़ नहीं था? क्या उसने संत मती या संत यूहन्ना 6वें अध्याय में प्रतिज्ञा नहीं की थी, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आई है? यदि कोई पुरुष स्त्री से खाता, और देखो, जन्म के माध्यम से, स्त्री के द्वारा जन्म लेने से हम सब मरते हैं क्योंकि हम मृत्यु के अधीन हैं। क्या यह सही है? स्त्री के द्वारा जन्म लेने से, पुरुष के द्वारा जन्म लेने से हम सभी हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। स्त्री मृत्यु का पेड़ है, पुरुष जीवन का पेड़ है, क्योंकि यहाँ तक स्त्री उसमें जीवन को लिए हुए होती भी नहीं है। यह बिल्कुल सही है, वो जीवन का जीवाणु पुरुष में से आता है, सही तरह से स्त्री के अंदर जाता है, और स्त्री एक शिशु को जीवित रखने की मशीन के अलावा कुछ नहीं है, और बच्चा जुड़ा नहीं होता है केवल नाभि के तंतु से। माँ के लहू का एक कण भी बच्चे में नहीं होता है, उसके लहू में जन्म लेता है, लेकिन बच्चे में उसके लहू का एक कण भी नहीं होता है। जाकर पता करें, या डॉक्टर की किताब पढ़ें, या अपने डॉक्टर से पूछें, आप देखेंगे यह वहाँ नहीं होता है। नहीं श्रीमान, इसका बिल्कुल एक कण भी नहीं होता है, वो सिर्फ अंडा ही है, बस इतना ही, और जीवन पुरुष से आता है। यह दिखाने के लिए एक सुंदर नमूना है कि स्त्री के जरिए से, स्वाभाविक जन्म के जरिए से, हम सभी को मरना है, क्योंकि हम आरंभ से ही मरे हुए हैं, और केवल उस पुरुष मसीह यीशु के द्वारा ही हम जीवित रह सकते हैं। और वहाँ अदन के बगीचे में दो पेड़ हैं, क्या आप इसे नहीं देख सकते? और देखो, और उस दिन इस पेड़ पर एक करूब पहरा देता था कि यदि उन्होंने कभी उस जीवन के पेड़ का स्वाद चखा, तो वे सभी हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। कितने लोगों को ये पता है? वे सभी हमेशा जीवित रहेंगे। और पहली बार उन्होंने इसका स्वाद चखा, दूत ने कहा, हम इसका पहरा देंगे, और वहाँ उन्होंने पूर्व की ओर उस अग्नि में तलवारों के साथ करूबों को उसका पहरा देने के लिए रखा। वे इसे वापस पूर्व की ओर ले गए और उस पेड़ की अग्नि में तलवारों से रक्षा की, ताकि वे इसे अंदर आकर इसे ना ले सकें इस पेड़ से। और जब यीशु आया, तो उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, कि जो मनुष्य इस रोटी को खाता है वो कभी न मरेगा। वहाँ पर आपका पेड़ है, वहाँ आपकी स्त्री है, वहाँ आपकी यौन क्रिया है जो मृत्यु लाती है। जैसे निश्चित रूप से एक यौन इच्छा होती है वहाँ उसके द्वारा मृत्यु को लाती है, और जितना निश्चित वहाँ एक आत्मिक जन्म है वहाँ उसके द्वारा अनंत जीवन आता है। स्त्री के जन्म के द्वारा मृत्यु आती है और पुरुष के जन्म के द्वारा जीवन मिलता है। आमीन, वहाँ आप हैं। अब केन को वापस लेते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आत्मा और वो नीचता कहाँ से आती है? यदि केन, देखो, यदि केन आदम का पुत्र था जो परमेश्वर का पुत्र था, तो वो दुष्टता कहाँ से आई? पहली चीज जब उसका जन्म हुआ तो उसने घृणा की, वो हत्यारा था, वो ईर्ष्या रखने वाला था। और अब उसके पिता का स्वभाव लें, बहुत पहले आरंभ में ही लूसीफर, और वो आरंभ में था, वो मिकाएल से ईर्ष्या कर रहा था, जिसने सारी परेशानी को आरंभ किया। कितने लोगों को ये पता है? और केन के पास अपने पिता का स्वभाव था, जिससे उसने अपने भाई से ईर्ष्या की और उसे मार डाला। वो शुद्ध, वो स्वभाव उस शुद्ध धारा से बाहर नहीं आ सकता। ये आया, इसे इस दूषित धारा में से बाहर आना था। और केन पर ध्यान दे, जैसे ही उसने जन्म लिया था, और उसके बाद हाबिल का जन्म हुआ था, फिर वो आदम से गर्भवती हुई, और वो उसके पास गया, और उसने पुत्र हाबिल को उत्पन्न किया, और हाबिल मसीह का एक नमूना था। और जब हाबिल मारा गया, तब शेत ने उसका स्थान लिया, मसीह की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान प्रतिछाया में। लेकिन अब केन ने आराधना की, उसके सारे शारीरिक कार्य जो बस आज की शारीरिक कलीसिया की तरह हैं, वे कलीसिया जाते हैं, वे आराधना करते हैं। केन ने आराधना की, वो एक विधर्मी नहीं था, वो साम्यवादी नहीं था। केन एक विश्वासी था, वो परमेश्वर के पास गया, उसने एक वेदी बनाई, उसने वो सब धार्मिक कार्य को किया जो हाबिल ने किया था, लेकिन उसके पास परमेश्वर की इच्छा का आत्मिक प्रकाशन नहीं था। प्रभु का नाम धन्य हो, वहाँ आप हैं। आप इसे देखते हैं, उसके पास आत्मिक प्रकाशन नहीं था, और आज कलीसिया के साथ भी यही मामला है। और यीशु ने कहा कि वो उस आत्मिक प्रकाशन पर अपनी कलीसिया को बनाएगा। आपने इसे समझा? ओह प्रभु, अब आपकी आंखें खुल सकती हैं। देखो, आत्मिक प्रकाशन। केन आया, उसने एक वेदी बनाई, उसने आराधना की, उसने बलिदान लाया, उसने घुटने टेके, उसने परमेश्वर की स्तुति की, उसने परमेश्वर की आराधना की, उसने वो सब किया जो धार्मिक रूप से हाबिल ने किया, और परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसके पास आत्मिक प्रकाशन नहीं था। केन के उसी क्रम में से आते हुए, सीधे संदूक में से होते हुए, संदूक से सीधे इसराइल में, इसराइल से ठीक आगे यीशु में, और यीशु से ठीक आगे आज के दिन तक। और देखो कि यदि वो शारीरिक मौलिक सिद्धांत की कलीसिया कठोर और हट्टी और विद्वान, मेरा मतलब उन लोगों से है जिनके पास वचन है, जो सभी सिद्धांतों और धर्म ज्ञान को जानते हैं, वे इसे समझा सकते हैं, लड़के बिल्कुल इसके जैसे, लेकिन बिना आत्मिक प्रकाशन के। यह सही बात है, यही केन की शिक्षा है। बाइबल ने कहा, उन पर हाय, क्योंकि वे केन की शिक्षा पर चले और बिलाम की सी गलतियों में दौड़े और कोरह के कहने से नाश हुए। यहूदा की उसी किताब में उसने कहा, वे इस दोष के लिए पहले से ठहराए गए थे, निश्चित रूप से वे हैं। देखा, बालाम क्या था? वो एक बिशप था, सारी कलीसिया के वो ऊपर था, वो वहाँ उतना ही मौलिक सिद्धांत से ऊपर आया जितना वो आ सकता था। उसने भेंट उसे वहाँ ऊपर प्रसिद्ध लोगों में खड़े होते हुए देखे, वहाँ उनके महान प्रसिद्ध लोगों में खड़े होते हुए, और वे अविश्वासी नहीं थे, वे विश्वासी थे। यह मोआब का गोत्र लूत की बेटी में से आया था, लूत जो रहता था, लूत की बेटी जो अपने पिता के साथ रहती थी और गर्भवती हुई, और उसको एक बालक हुआ, और वो बालक मोआब के गोत्र से जन्मा था, और वे एक बड़े संप्रदाय थे, बड़े सजे हुए लोग, और उनके पास राजकुमार और राजा और प्रसिद्ध लोग थे, उनके पास बिशप और कार्डिनल और सब कुछ था। और यहाँ पवित्र शोर शराबा करने वाले लोगों का एक समूह ऊपर आता है, दूसरा झुंड इसराइल, एक छोटा सा झुंड जो संप्रदाय नहीं था, अंतर संप्रदाय था, और उन्होंने वो सब कुछ किया जो मानचित्र पर किया जाना था, बुरा भी, लेकिन ये क्या था? उनके पास आत्मिक प्रकाशन था, और परमेश्वर उनके साथ आग के खंभे में था। ओह मैं जानता हूँ कि उनके पास शारीरिक बातें थी और लोगों ने कहा ये इस तरह के हवाओं का एक स्तंभ है, उन्हें बाहर निकालने के अलावा कुछ नहीं करना है, लेकिन उनके पास आत्मिक प्रकाशन था और उनके पास एक प्रहार की हुई चट्टान थी, उनके पास एक पीतल का सांप था, उनके पास आग का एक खंभा था जो उनके साथ साथ जा रहा था। हालेलुया, मैं जानता हूँ आप सोचते होंगे कि मैं उत्साहित हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं बस अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ध्यान दें, जब मैं सोचता हूँ वही परमेश्वर आज हमारे साथ रहता है, यह अब भी वचन का आत्मिक प्रकाशन है, निश्चय ही यह है, यह अनंत रूप से सही है। प्रभु का नाम धन्य हो। जी हाँ श्रीमान, यहाँ पर वो वहाँ खड़ा हुआ था, मौलिक सिद्धांत उन बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन लोगों का झुंड पहाड़ी पर खड़ा हो गया और वहाँ अपने बिशप को ले आए और वे बस उतने ही धार्मिक थे और उसी प्रकार के धर्म, उन्होंने उसी परमेश्वर की आराधना की। उन्होंने कहा नीचे उस कचरे के ढेर को देखो, क्यों? उनके पास एक भी संप्रदाय नहीं है, वे डींग मारने, चीखने, चिल्लाने, पवित्र शोर शराबा करने वाले झुंड के अलावा कुछ नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही वे थे। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि वे पवित्र शोर शराबा करने वाले थे, उत्पत्ति में वापस देखें और पता करें कि जब उन्होंने पार किया और एक अद्भुत कार्य किया गया था और मरियम ने एक डफ लिया और उसे बजाते हुए किनारे पर गई, वो आत्मा में नाच रही थी और मूसा आत्मा में गा रहा था, क्या वो एक झुंड नहीं है जिसे हम कहते हैं आजाद पवित्र शोर शराबा करने वाले? मैं नहीं जानता कि ये क्या है, गाना और कूदना और स्तुति करना। और राष्ट्रों के लोगों ने उनसे हमेशा ही बैर किया है, लेकिन परमेश्वर उनके संग था, उनके पास आत्मिक प्रकाशन था, वे आग के उस खम्भे के पीछे पीछे चल रहे थे। और मोआब ने कहा अब यहाँ देखो, हम सारे कार्डिनल्स और सारे बिशपों को बुलाएंगे और सारे प्रेस्बिटर और उन्हें यहाँ ले आएंगे, हम इसके विषय में कुछ तो करेंगे क्योंकि हम एक धार्मिक राष्ट्र हैं, हम उस मत प्रचार को अपने उत्तम संप्रदाय में मिश्रित नहीं होने देंगे। और इसलिए वे उन्हें वहाँ ले आए और उन्होंने 12 वेदियाँ बनाई। इसराइल के पास बिल्कुल ठीक वैसी ही 12 वेदियाँ थी, उन्होंने उस पर 12 बलिदान रखे, बैल बिल्कुल ठीक वही जो इसराइल के पास था, जो परमेश्वर की मांग थी। उन्होंने उस पर 12 भेड़े रखी जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन को दर्शा रहे थे, दोनों स्थानों पर 12 भेड़े। सारे प्रसिद्ध लोग, बिशप और सभी आसपास खड़े हुए थे, उन्होंने बलिदान को प्रज्वलित किया, उन्होंने प्रार्थना की यहोवा की ओर हाथ उठाकर और कहा हे यहोवा हमारी सुन। वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? और उनका पुराना बालाम इस तरह से आगे निकल गया और आत्मा उस पर उतर आया, निश्चय ही, लेकिन वो एक शारीरिक था। आत्मा ढोंगी पर उतर सकती है, बाइबल कहती है। अब आपने मुझे इसकी शिक्षा देते हुए सुना है, बारिश धर्मी और अधर्मी पर पड़ती है, लेकिन इसकी तुलना वचन के साथ होना है, यही है जहां आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद जब उसने किया और जब आत्मा हालांकि उस पर था, सच्चाई को बताया, उसने इसराइल को शाप देने की कोशिश की और उसने इसराइल को आशीष दिया। अब यदि परमेश्वर केवल एक अच्छी कलीसिया और एक अच्छे बिशप और एक अद्भुत पास्टर का आदर करता है, लोगों का एक विद्वान झुंड, तो वो उस बलिदान को स्वीकार करने के लिए कर्तव्य से बंधा हुआ है, क्योंकि वो बस मौलिक सिद्धांत रूप से उतना ही सही था जितना कि इसराइल सही था, लेकिन उसके पास वचन का आत्मिक प्रकाशन नहीं था और न ही परमेश्वर की इच्छा थी। आप वहाँ हैं, आज यही वो अंतर है। यीशु की ओर देखो, उन्होंने कहा उस व्यक्ति से दूर रहो, हम जानते हैं कि वो एक सामरी है, वो पागल है, क्या तुम हमें सिखाओगे? खैर तुम तो व्यभिचार में जन्मे थे, तुम कुछ भी नहीं थे सिवाय एक नाजायज बालक के, तुम्हारा पिता कौन है? परमेश्वर को अपना पिता कहते हो, तुम ईश निंदा करने वाले हो, क्यों? तुम्हारा हमें बताने का अर्थ है, हम प्रचारक रहे हैं, हम बिशप रहे हैं, शुरू से ही अब तक हमारे पूर्व 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 परदादा प्रचारक और बिशप थे, हम कलीसिया में जन्मे और पले बड़े हैं, हम सबसे उच्च धर्म विद्यालय में से होकर आए हैं, हम अक्षर दर अक्षर हर एक वचन को जानते हैं और तुम हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहीं पर कभी स्कूल गए हो? तुम्हें ये शिक्षा कहाँ से मिली? उसने कहा तुम्हारे पिता शैतान से हो। यीशु ने कहा उनके बीच कोई चिन्ह और अद्भुत कार्य नहीं थे, उनके बीच कोई दिव्य चंगाई और चीजें नहीं थी, उनके बीच कोई आशीषें नहीं थी, लेकिन यीशु पूरी तरह से वचनों का आत्मिक प्रकाशन था। उन्होंने कहा, क्यों ये ऐसा और ऐसा लिखा है? और यीशु ने कहा, हाँ और ऐसा भी लिखा है। लेकिन परमेश्वर ने अपने चिन्हों के द्वारा उसके मनुष्य को प्रमाणित किया। पतरस ने उसी बात को कहा प्रेरितों के काम 2 में। उसने कहा, तुम इज़राइल के लोगों, नासरत का यीशु तुम्हारे बीच में परमेश्वर का स्वीकृत किया हुआ मनुष्य था, उन चिन्हों और अद्भुत कामों के साथ जो परमेश्वर ने उसके द्वारा तुम्हारे बीच में किए और जिन्हें तुम आप ही जानते हो, वहाँ आप हैं। उसे वहाँ उसके द्वारा स्नेह दिन या महासभा परिषद द्वारा सौंपा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के द्वारा परमेश्वर ने उसे इस मृत्यु से मरने के लिए पहले से ठहराया है। तुमने उसे क्रूर और दुष्ट हाथों से पकड़वाया है। तुमने जीवन के राजकुमार को क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने जिलाकर खड़ा किया, और हम इसके गवाह हैं। क्या ही प्रचारक है! नहीं, वो अपने यहाँ तक अपने नाम का हस्ताक्षर भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर को जानता था। उन्होंने कहा, उन्होंने उस पर ध्यान दिया कि वो यीशु के साथ रहा था। निश्चित रूप से यह एक आत्मिक प्रकाशन है। ओ प्रभु, अब आप वहाँ हैं। केन ठीक उसी क्रम में था। वो शारीरिक कलीसिया आज भी उसी क्रम में है। आत्मिक कलीसिया के पास अब भी अग्नि का खंभा है, अब भी चिन्ह है, अद्भुत कार्य है, अब भी वही मसीह है जो वहाँ मरते हुए मेमने से होते हुए प्रमाणित करता है, और अदन के बगीचे में मेमने के दूसरे आगमन तक पूरी तरह से वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और केन के उस क्रम में धार्मिक और चमकाए हुए और विद्वान ठीक आगे तक वैसे ही हैं, बस वैसे ही हैं, हर एक दिन बस वैसे ही हैं। निंदा करने वाले और सताने वाले जैसे केन हाबिल के लिए था, वैसे ही आज भी है, और वैसे ही रहे हैं और हमेशा रहेंगे। शारीरिक अविश्वासी, यह सही है। अब उत्पत्ति 3:8 और मैंने 20 को भी यहाँ लिखा है। मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, और आदम ने बुलाया, और आदम ने अपनी पत्नी को बुलाया हवा, क्योंकि वो सब जीवतों की माता थी। देखो, यह तब हुआ जब इस बहकाने के कार्य ने जगह ले लिया था। केन, अब रुकना। आप कहते हैं, भला कैसे एक सर्प एक सांप हो सकता है? लेकिन भाई, यहाँ पर देखो, बाइबल यह नहीं कहती कि वो एक सर्प था। बाइबल ने कहा वो मैदान के सभी पशुओं में सबसे धूर्त था। वो एक रेंगने वाला जंतु नहीं था, वो एक पशु था, वो एक। और वहाँ, और यदि आप चाहें तो मैं आपको इसे हमारे बीच एक छोटे से चिन्ह के रूप में दूंगा। यही है जहाँ पूरा विज्ञान उलझा हुआ है। मनुष्य के सबसे नजदीकी मिलती जुलती चीज जिसे वो पा सकते हैं, वो है चिंपांजी। कितने लोग ये जानते हैं, लेकिन वहाँ पर बीच में कुछ तो है। वे चिंपांजी की हड्डियों को मनुष्य की हड्डियों से नहीं मिला सकते, फिर भी यह सबसे नजदीकी चीज है। वे उसे मेंढक के बच्चे से उठा सकते हैं, वे उसे एक मेंढक से उठा सकते हैं, वे उसे जानवर और हर एक जानवर तक ला सकते हैं, उसे भालू से उठा सकते हैं। आप एक भालू को लें और उसकी खाल को खींच लें, यह बिल्कुल एक छोटी महिला की तरह ही होता है। बिल्कुल वही चीज, वापस उसे ले और हरी चीज उन्हें वहाँ खड़ा करें, और जाकर महिला को ऐसे, महिला को इस तरह खड़ा करें। यह बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि एक भालू हो। पैर वैसे ही चलते हैं और हाथ ऐसे ही चलते हैं, बिल्कुल मनुष्य जाति की तरह। लेकिन एक चिंपांजी उससे भी ज्यादा नजदीकी होता है। यह लगभग वैसा ही है, लेकिन वे इसे नहीं पा सकते हैं। यहाँ थोड़ा रहस्य है, यदि आप इसे जानना चाहते हैं। आप जानते हैं कि यह कहाँ पर है? यह उनसे छिपा हुआ है। वे जितनी चाहें उतनी हड्डियाँ खोद सकते हैं, वे खोद सकते हैं, तराशने वाले खोद सकते हैं। और विज्ञान और यह और कालक्रम, विज्ञान परमाणु माप से समय के तराजू को माप सकते हैं, लेकिन वे इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये तो सर्प था जो धरती पर किसी भी और चीज से बढ़कर मनुष्य के समान था, और परमेश्वर ने उसे शाप दिया और उसके पेट के बल पर डाल दिया, और अब वो एक ऐसे सर्प में बदल गया जो मनुष्य की समानता में नहीं जान पड़ता था। अब बस वैज्ञानिक लोग अपने सिर को खुजाते हैं और उन्हें कुछ समय के लिए ऐसा करने दें, लेकिन बाइबल यह घोषणा करती है वो मैदान के सभी पशुओं में सबसे धूर्त था। यह सही है, वो वह जोर था जो मनुष्य और बंदर के बीच खड़ा होता है, और परमेश्वर ने उसे शाप दिया और उसे उसके पेट के बल गिरा दिया उस बात की वजह से जो उसने की थी, और उसने उस स्त्री को बहकाया, और उससे उस स्त्री को पहला पुत्र केन उत्पन्न हुआ। जो सर्प की खुद की प्रेरणा के स्वभाव के अनुसार था, वो शैतान जो सर्प में समा गया, उसने ऐसा किया और वो गर्भवती हुई और जन्म दिया। वो फिर से गर्भवती हुई उसके बहकाए जाने के बाद। अब देखो, वो बहकाई गई, वो लगभग तो उसने गलत किया, लेकिन वो सचमुच जब वो अपने पति के द्वारा गर्भवती हुई तो वो वैध या उचित था। इसके लिए हो सकता है कई 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 महीनों और कई दिनों के बाद हुआ होगा। आप इसे नहीं बता सकते हैं, हम नहीं जानते, लेकिन उसने आदम की ओर से उत्पन्न किया। और किसी के पास ये सवाल भी था, कहा तो ठीक है पुत्र। उसने कहा कि वो जा रही थी, जैसे ही केन का जन्म हुआ उसने कहा उसे प्रभु की ओर से एक पुत्र मिला है। बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसा होना ही था, यह प्रकृति का नियम था। बस ठीक उसी तरह जैसे आप आज हैं, जब आप जन्म लेते हैं तो परमेश्वर नीचे आकर और आपको नहीं बनाता है। आप अपने पिता और माता के एक वंशज हैं और आप एक वहाँ एक आपके बच्चे आपके वंशज होंगे। यह हर समय एक पुनः उत्पादन है, ठीक आगे तक, जैसे बीज पेड़ और ऐसी ही चीजें, लेकिन मूल पर वापस आती हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह वर्णन करता है। हमारे पास कितना समय है? और अधिक समय नहीं है। आगे के लिए इस एक अच्छे वाले को सुनिए, हम रविवार को ले लेंगे। एक ही आत्मा के द्वारा हम सबका एक देह में बपतिस्मा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं मसीह उस समय पर। अब मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ वचनों को लूँ, उस पर अच्छे वचन। यहाँ एक अच्छा प्रश्न है, बस जैसे क्या आप इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ एक या दो मिनट मुझे और सहन करेंगे? ये अपने आप के लिए उत्तर दे सकता है। जब आप कहते हैं दुष्ट अनंतता के लिए नहीं जलेंगे, तो ठीक है, अब मैंने यहोवा विटनेस को भगाने को लगाया है, क्या मैंने नहीं किया है? जब आप कहते हैं कि दुष्ट अनंतता के लिए नहीं जलेंगे, तो क्या आपका मतलब नरक में है या आपकी झील में है? मैं जानता हूँ कि यह प्रकाशित वाक्य में बताता है, यह 20वां अध्याय है, कि नरक को आपकी झील में डाला जाएगा। यदि वे अनंतता के लिए नहीं जलते हैं, तो उनका क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी इसमें से होकर बताया है, भाई या बहन, ये जो कोई भी था, वे विलुप्त हो जाते हैं। उनके लिए और कुछ नहीं है, उनकी एक शुरुआत थी और वहाँ उनका अंत होता है, वे बस अब और नहीं हैं। कैसे वे कब तक जलेंगे, यह कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन देखो वहाँ, यदि आप बस इसे अपने मन में बैठा सकते हैं, देखो तो ये बहुत ही सरल है। वहाँ लेकिन केवल एक ही प्रकार का अनंत जीवन है और वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा आता है, और केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन है। यदि आप यहाँ शब्दकोश में जाएंगे तो ग्रीक शब्द जोई को देखें, जोई अनंत जीवन होता है, अनंत जीवन परमेश्वर है, और यीशु ने कहा मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। और यदि आप यहाँ शब्दकोश को देखेंगे तो उसने कहा जोई, वहाँ पर केवल यही वो अनंत जीवन है। बाइबल में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ यह कभी बताता हो कि वहाँ अनंत नरक होगा, यह कहता है कि वे जलेंगे हमेशा और हमेशा के लिए। अब उस शब्द हमेशा को लें, युगों की ओर देखें। क्या आपने यहाँ बाइबल में ध्यान दिया, कितने लोगों ने कभी यह कहते सुना है, और युगों, कितने लोग जानते हैं कि युगों एक समय की अवधि होता है? क्यों? निश्चित रूप से हर कोई जानता है युगों एक समय की अवधि है, और वे युगों युगों तक जलते रहेंगे। यह समय की अवधि है, आग की झील में डाल दो और युगों युगों तक जलता रहेगा। युगों का अर्थ है समय की अवधि। वे हो सकता है दंड में 100 करोड़ वर्षों तक जलें, लेकिन अंत में उन्हें समापन तक आना ही है, पूरी तरह से विलुप्त होने के लिए। देखिए, क्योंकि हर एक चीज जो सिद्ध नहीं है वो सिद्ध का बिगड़ा हुआ रूप है, और उसका एक आरंभ था, इसलिए उसका अवश्य ही अंत होगा। लेकिन हम जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जो ही है, परमेश्वर का खुद का जीवन हम में है, और अनंत जीवन है, हमेशा और हमेशा के लिए जीवन नहीं है। पापी के पास हमेशा और हमेशा के लिए जीवन होता है, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन है। भाई कॉक्स ज्यादा समय नहीं हुआ मेरे मार्ग पर बैठे हुए थे, इससे पहले हम उसके बाद हमारे पास वहाँ पत्थर थे, और उसने एक छोटे से पुराने जीवांश को उठाया और उसने कहा भाई ब्रैनम ये कितना पुराना है? ओह, मैंने कहा कालक्रम विज्ञान के रूप से आप कह सकते हैं कि यह 10,000 वर्ष पुराना है। किसी प्रकार का एक छोटा पुराना समुद्री दैत्य जो एक समय में रहता था एक छोटा समुद्री जानवर, हो सकता है कि बीते युगों में वे बहुत पहले ही रहता हो। उसने कहा, जरा सोचिए कि मनुष्य उस जीवन में कितना छोटा है। मैंने कहा, ओह लेकिन भाई उस चीज का एक अंत है, लेकिन मसीह में हमारे पास जो जीवन है उसका कोई अंत नहीं है। वो हो सकता है हमेशा के लिए दो या तीन जीवित रहें, लेकिन इसके पास अनंत जीवन कभी नहीं होगा, क्योंकि अनंत जीवन केवल परमेश्वर से ही आता है। अनंत जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है, और वो कभी भी न्याय में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। आप वहाँ हो, तुम विश्वासी होने के द्वारा अनंत जीवन को पाते हो। एक अविश्वासी के पास हमेशा का जीवन होता है, एक विश्वासी के पास अनंत जीवन होता है, और वो नाश नहीं हो सकता क्योंकि ये अनंत है। लेकिन एक विश्वासी वो जाएगा, एक अविश्वासी दुनिया में से होते हुए जाएगा, उसके पास कष्ट दुख होंगे, जिसे वो बड़ा अच्छा समय कहते हैं। वाह, एक बढ़िया समय है। महिलाएं शराब और बढ़िया समय, वह सोचता है कि वो आगे जा रहा है, वो मर जाएगा, वो आग और गंधक की झील में चला जाएगा जो जलता है, जहाँ जलना हमेशा और हमेशा के लिए जारी रहता है, और हो सकता है 100 मिलियन वर्षों तक उसका प्राण, हो सकता है आग और गंधक की झील में पीड़ित हो। मैं आप कहते हैं, क्या तब यह नियमित गंधक की तरह ही होगा? मैं सोचता हूँ कि यह उससे भी लाखों गुना बदतर होगा। मैं सोचता हूँ कि आप इसे आग से, वास्तविक आग से वर्णन नहीं कर सकते हैं। एक ही कारण से यह लिखा गया है, आग के द्वारा, क्योंकि यह आग हमारे पास सबसे अधिक भस्म करने वाली चीज है। यह पूरी तरह से भस्म करता है और सब कुछ नष्ट कर देता है। आग ऐसा करती है तो ठीक है, फिर वो वहाँ होगा, लेकिन आपके पास एक प्राण होगा जिसे दंडित किया जाना होगा किसी प्रकार के। अब आपको आग शब्द को देखना होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का उपयोग किया जाता है, पवित्र आत्मा और आग, क्योंकि पवित्र आत्मा की आग पाप को जलाती है, देखो, और शुद्ध करती है। लेकिन यह आग, यह नरक से आती है, इसे आग की झील कहा गया, और हमेशा ये क्या है? यह पीड़ा के साथ एक दंड है। धनी मनुष्य ने नरक में होते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई और कहा, लाजर को उसकी उंगलियों पर थोड़ा सा जल देकर मेरे होठों पर डालने के लिए भेजें, क्योंकि ये आग की लपटें मुझे पीड़ा दे रही हैं। यह मत सोचना कि एक जलता हुआ नरक और एक वास्तविक नरक नहीं है, वहाँ है। यदि वहाँ एक वास्तविक शैतान है तो वहाँ एक वास्तविक नरक है। लेकिन आप देखते हैं, जो कुछ भी दूषित हुआ है उसका अंत है, क्योंकि इसे अंत में परमेश्वर की उस शुद्धता और पवित्रता पर वापस आना ही है। और परमेश्वर अनंत है, और यदि हमारे पास अनंत जीवन है, परमेश्वर हम में है, और हम अब मर नहीं सकते जैसे परमेश्वर नहीं मर सकता, आप वहाँ हो। अब विषय वास्तव में अपना ही वर्णन करता है, देखो, इसे सही बनाता है। अब आइए देखते हैं, मेरे पास एक था, मैं नहीं जानता कि क्या, हाँ, क्या होगा, उनका क्या होगा, वे विलुप्त हो जाते हैं, उनके लिए अब और कुछ नहीं है, प्राण चला जाता है, आत्मा चला जाता है, जीवन चला जाता है, शरीर चला जाता है, विचार चले जाते हैं, स्मृति चली जाती है, और वहाँ महिमा में यहाँ तक अब और बुरा विचार होगा भी नहीं, या यह कभी हुआ भी नहीं होगा। यह सही है, यह सब होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस भाग में यहाँ लोग होंगे? क्या बाइबल नहीं कहता यहाँ तक कि दुष्टों के विचार भी नष्ट हो जाएंगे? इसके विषय में विचार ही नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक मनुष्य होगा, यहाँ पर परमेश्वर महान, वो एक जो पवित्र है, और ये जानते हुए कि उस ओर एक गड्ढा है जिसमें प्राण जल रहे हैं, क्यों ये स्वर्ग नहीं हो सकता? वही विचार, वही स्मृति, हर एक चीज जो दूषित हुई है, हर एक दुष्ट विचार, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और सब कुछ जो इसमें दुष्टता है, और हम कुछ भी नहीं होंगे सिवाय पवित्रता के, जो ही परमेश्वर का जीवन अनंत काल तक और आगे युगों के लिए, और आगे और आगे और आगे, यह कभी खत्म नहीं होगा, यह अनंत होगा। वे सनातन दंड में चले गए, लेकिन धर्मी अनंत जीवन में चले गए। आपने इसे समझा? सनातन दंड, अनंत जीवन, क्या ही अंतर है। अब देखो, यह नहीं, अब मैं जानता हूँ आपके लिए, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, मेरा मतलब अपने आप को सब कुछ जानने वाले के रूप में पेश करने की कोशिश करना नहीं है। यदि मैं ऐसा करता हूँ, अब मेरे पास 3 या 4 और अच्छे प्रश्न हैं, मैं उन्हें रविवार सुबह को ले लूँगा, प्रभु ने चाहा तो। अब देखो, देखिए ऐसे सवाल उठते हैं। मैं एक पुराना प्रचारक हूँ, मुझे सेवकाई में 26 वर्ष हुए हैं और मैं इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ मैंने अपने जीवन में कभी भी कुछ भी सामने रखने की कोशिश नहीं की है बिना पहले इसके प्रकट हुए। और मैं बहुत आभारी हूँ कि प्रभु का दूत, मेरे पास न कोई शिक्षा थी न योग्यता थी, और ये दूत नीचे उतर आया और परमेश्वर की ओर से भेजी गई मेरी सहायता रही है। और उसने मुझे कभी एक बात नहीं बताई सिवा उसके जो पूरी तरह से उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो कुछ जुड़ा हुआ था। ये इतना हद तक जब उसने कहा तो मैंने तुरंत ही लिख दिया और तुम दिव्य चंगाई के दान को लोगे, और मैंने इसे ठीक उसी तरह से लिख दिया जैसे उसने कहा था। और लगभग 3 वर्ष के बाद प्रबंधक ने मेरा इसकी ओर ध्यान दिलाया, कहा, भाई ब्रैनम, क्या आपने इस पर ध्यान दिया? यह बिल्कुल ठीक वैसा ही है इतना तक कि उसने आपको बताया था, एक दान। देखो, ऐसा कभी नहीं कहा विशेष दान, और हर एक जन बाइबल में हर एक दान विशेष दान है, लेकिन दिव्य दान और यह एक दान है, यह चंगाई का दान है। आपके पास सभी प्रकार के चंगाई के दान हो सकते हैं, विभिन्न तरह के, लेकिन हर दूसरा विशेष दान है, विशेष भविष्यवाणी का दान, विशेष इसका दान। लेकिन दिव्य चंगाई बहुवचन में होती है, वे दान। और मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पवित्र आत्मा इतना सिद्ध है। ओह प्रभु धन्य है। क्या आप समझते हो कि वही पवित्र आत्मा जिसने बाइबल को लिखा था सैकड़ों मनुष्यों के द्वारा सैकड़ों वर्ष के अंतराल, और उनमें से एक ने भी एक को दूसरे से विभाजित नहीं किया, उसमें से हर एक जन संपूर्ण था और एक ने दूसरे के बारे में यहाँ तक कभी सुना भी नहीं। और पौलुस वहाँ गया और वो वहाँ अरब में था और 14 वर्षों तक यरूशलम का दौरा भी कभी नहीं किया, लेकिन यरूशलम में वहाँ था और वहाँ यरूशलम कभी भी नहीं गया, लेकिन वहाँ अरब में और प्रचार करना आरंभ किया। 14 वर्षों तक पतरस और बाकी लोगों को कभी नहीं देखा, और जब वे एक साथ आए तो वे एक ही बात का प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम में पानी का बपतिस्मा और दिव्य चंगाई और परमेश्वर की सामर्थ। ओह,
I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm so glad I can say I'm one of them.
Listen, सुनो, मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा संदेश है।
Come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
क्या आप खुश नहीं हैं कि आप उनमें से एक हैं? ये क्या है? यह आत्मा है जो प्रकट करता है, यह परमेश्वर का प्रकाशन है। इस चट्टान पर मैं परवाह नहीं करता यदि एक आर्क बिशप कैथोलिक याजक कुछ समय पहले मेरे घर में बैठा हुआ था और उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है श्रीमान। कहा, मेरे पास बिशप का एक पत्र है जो आपके लिए है। मैंने कहा, अच्छी बात है श्रीमान। उसने कहा, आप जो बयान देते हैं, क्या आप अपना हाथ पकड़कर और गंभीरता से शपथ खाएंगे कि आप सच बोलेंगे? मैंने कहा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा बाइबल कहती है बिल्कुल भी शपथ न खाना, न आकाश की या धरती की, क्योंकि यह इसके पैरों की चौकी है, आपकी हाँ की हाँ और ना की ना हो। यदि बिशप सुनना चाहता है कि मुझे क्या कहना है तो उसे इसके लिए मेरे शब्द को लेना है। यदि वो नहीं लेता है तो मैं शपथ नहीं खाता। ये छोटा याजक यहाँ सेकंड हार्ट कलीसिया से है। उसने कहा क्या आपने पॉलिन फ्रेजियर को एक फलाना फलाना तारीख में बपतिस्मा दिया था? मैंने कहा महोदय मैंने ओहियो नदी में उसे दिया था। कहा आपने उसका बपतिस्मा किस प्रकार से किया? मैंने कहा मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में पानी के अंदर डुबाकर बपतिस्मा दिया। उसने इसे लिखकर रखा। कहा आप जानते हैं कैथोलिक कलीसिया ऐसे ही बपतिस्मा लिया करता था? मैंने कहा कब? उसने कहा आरंभिक युग में। मैंने कहा कौन सा आरंभिक युग? उसने कहा तो शुरुआत में। मैंने कहा कौन सी शुरुआत? उसने कहा बाइबल में। मैंने कहा क्या आपका मतलब है चेलों में? उसने कहा निश्चय ही। मैंने कहा क्या आप कैथोलिक कहते हैं या वो आप कहते हैं कि वे चेले कैथोलिक थे? उसने कहा निश्चय ही वे थे। मैंने कहा मैंने सोचा था कि कैथोलिक कलीसिया नहीं बदली। उसने कहा ऐसा नहीं है। मैंने कहा फिर पतरस ने क्यों कहा पश्चाताप करो और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो? और आप कहते हैं कि ऐसा था कि वो एक पोप था? हाँ। फिर आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा क्यों लेते हैं? और वो तो पानी के अंदर डुबाता था और आप पानी का छिड़काव करते हो, अब क्या हो गया है? उसने कहा लेकिन आप देखो। कहा कैथोलिक कलीसिया के पास कुछ भी करने का अधिकार है जो वे करना चाहते हैं। मैंने कहा और आपने चेलों को कैथोलिक कहा? उसने कहा हाँ। मैंने कहा श्रीमान मेरे पास जोसेफस है, मेरे पास पॉस की शहीदों की किताब है, मेरे पास पैम्बर की किताब आरंभिक युग है, मेरे पास हिस्लॉप की दो बेबीलोन है, वहाँ जो दुनिया में सबसे प्राचीन इतिहास है, वहाँ पर मुझे दिखाएं कहाँ कैथोलिक कलीसिया को कभी नियुक्त किया गया था या कभी किसी संगठन में आने अंतिम प्रेरित की मृत्यु के 600 वर्ष के बाद। ओह, उसने कहा हम कलीसिया जो कहती है उस पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा मैं बाइबल जो कहता है उस पर विश्वास करता हूँ, समझे? क्यों? उसने कहा परमेश्वर अपनी कलीसिया में है। मैंने कहा परमेश्वर अपने वचन में है। और मैंने कहा यदि? उसने कहा, मैंने कहा बाइबल ये नहीं कहती है कि परमेश्वर उसकी कलीसिया में है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर उसके वचन में है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और हमारे बीच में डेरा किया, यह सही बात है। मैंने कहा परमेश्वर अपने वचन में है। वो आगे बढ़ता गया और ये कहा, उसने कहा खैर हम वाद विवाद नहीं कर सकते। कहा क्योंकि आप बाइबल में विश्वास करते हैं, मैं कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैंने कहा मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है और इसमें एक भी विरुद्ध वचन नहीं है और यह परमेश्वर का वचन है, आने वाले सारे युगों के लिए उसकी अनंत योजनाएं हैं। उसने कहा आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलेगा, यह सही बात है, मैं वचन पर विश्वास करता हूँ। वो श्रीमती फ्रेजियर के पास चला गया। उसने कहा श्रीमती फ्रेजियर क्या आप यहाँ एक पन्ने पर हस्ताक्षर करेंगी जो सहमति देते हैं कि आपकी लड़की कैथोलिक कलीसिया की एक सदस्य हो सकती है? उसने कहा मैं बजाय इसके उसके साथ कब्र तक चलकर जाना पसंद करूंगी। कहा आपको शर्म आनी चाहिए। कहा आपको आभारी होना चाहिए कि वो लड़की उस बेहुदा की बातों से निकलकर कैथोलिक कलीसिया में आ रही है। कहा यदि ये तुम्हारी लड़की होती मेरे कलीसिया में आती तो क्या होता, तुम इसके बारे में क्या कहते? ओह, उसने कहा यह अलग बात है। कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो जानता था, वो कहीं तो था जब उसने उस छोटी महिला को वहाँ पर छोड़ा, वो जानता था कि वो कहीं तो था। उसने कहा अब वही दरवाजा खुला है जहाँ से आप अंदर आए हो, देखिए यही वो रास्ता है, भागो मत। आपको भागने की जरूरत नहीं है, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? सही है, आज परेशानी ये है आपके पास रीढ़ की हड्डी की बजाय एक सौभाग्य है या इच्छा की हड्डी है। परमेश्वर के लिए खड़े रहें और सही रहें। वही पवित्र आत्मा जो उन प्रेरितों पर और पहले के युगों में उतरा था वो आज भी उसकी कलीसिया में है जिनके लिए परमेश्वर ने स्वयं को प्रकट किया है, न वो जो इच्छा करता है, न वो जो दौड़ता है, लेकिन परमेश्वर जो दया को दिखाता है। यह परमेश्वर है अपने चुनाव के द्वारा लोगों को लाता है और उनकी आंखों को खोलता है। आप इसे कभी भी नहीं देख सकते हैं, आप अंधे हो और कभी नहीं देख सकते, जब तक कि परमेश्वर आपकी समझ को नहीं खोलता। बाइबल कहता है कि आप अंधे हो और आप देख नहीं सकते, वहाँ कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी शिक्षा विद्या के साथ आप जिसे पा सकते हैं, आप लगातार अंधे होते जाते हैं। अब आप यहाँ चर्च ऑफ क्राइस्ट है, आप जहाँ बाइबल बोलती है वहीं बोलें और चुप रहें जहाँ ये चुप है। इनमें से कुछ के विषय में क्या आप इस पर बहुत ही चुप रहते हैं? सही है। देखो, इसमें आत्मिक प्रकट सत्य की आवश्यकता है, तब परमेश्वर नीचे आकर और स्वयं को प्रकट करता है और इसे सत्य होने को प्रमाणित करता है। आमीन। आप उससे प्रेम करते हैं, वैसे ही मैं भी करता हूँ। आमीन। तो ठीक है, आप सभी मेथोडिस्ट अब बैप्टिस्ट के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, आप प्रेस्बिटेरियन अब आप कहते हैं भाई ब्रैनम, क्या आप बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन को नापसंद करते हो जो नहीं करते हैं? नहीं श्रीमान, मैं नहीं करता, मैं उन्हें अपना भाई करके मानता हूँ। बिल्कुल, मैं परवाह नहीं करता यदि आपने बपतिस्मा ही नहीं लिया हो, यदि आपने शारोन का गुलाब, घाटी की लिली और भोर के तारे के नाम से बपतिस्मा लिया था। ऐसा नहीं, यह लगभग वैसा ही होगा जैसा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा में लेना। बस तीन शीर्षक, वो शारोन का गुलाब था, क्या यह था घाटी की लिली, भोर का तारा, वे सभी निश्चित रूप से वो था, बस एक चीज या दूसरी चीज। लेकिन यहाँ पर जो ये है, सही वचन का तरीका यीशु मसीह के नाम में है। अगर आप वचन के अनुसार चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही है, यही सही तरीका है। अब यदि आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है कि यह सही है। आमीन। यदि यह परमेश्वर के लिए एक स्पष्ट विवेक की ओर एक अच्छा उत्तर है, आमीन, तो ठीक, सीधे आगे बढ़े। देखो, लेकिन जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरा भाग है, यदि आप मुझसे पूछते हैं, कहते हैं भाई ब्रैनम, क्या मुझे उस पर बपतिस्मा लेना चाहिए, मैं कहूँगा हाँ, मेरे भाग के लिए। वो छोटी स्त्री एक दिन यहाँ आई, कहा प्रभु ने मुझे प्रचारक बनने के लिए बुलाया है। मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया, न ही इस बात से अधिक कि मैंने ये विश्वास किया था कि वो चांद पर से छलांग लगा सकती है। और वो, मैंने कहा खैर ये बहुत अच्छी बात है बहन। मैंने कहा क्या आप विवाहित हैं? हाँ। दो बच्चे हैं? हाँ। मैंने कहा क्या आपके पति बच गए हैं? नहीं। मैंने कहा आप उसके साथ क्या करेंगी? उसे घर पर छोड़ दूंगी। मैंने कहा यह शैतान का अब तक का सबसे अच्छा चारा था। आप आरंभ से ही एक सुंदर महिला हैं और आप यहाँ कार्य क्षेत्र में बाहर निकल रही हैं। आप एक नियमित चारा बन जाएंगी और शैतान के निशाने पर रहेंगी, और आपका पति घर में एक जवान पुरुष, और आप उसे इन दो बच्चों के साथ छोड़ देंगी। वो दूसरी महिला के साथ यहाँ वहाँ जाना आरंभ करेगा और इन बच्चों का इन दिनों में से एक दिन दूसरा पिता होगा। मैंने कहा पहले स्थान पर यदि परमेश्वर ने स्त्री को बुलाया है तो उसने अपने वचन का खंडन किया। मैंने कहा अब यदि आप चाहती हैं तो ठीक है। मैंने कहा अब विचारों को परखना, आप कहती हैं कि प्रभु आपको विचारों को परखने को प्रदान करता है, क्या आप वहाँ मंच पर जाना चाहती हैं और इसकी कोशिश करना चाहती हैं? उसने कहा हाँ, और आप देखिए कि क्या हुआ। आप देखें, यह जोश में आना है, इसे तो वचन पर आना है। यदि यह वचन में नहीं है तो यह अच्छा नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि आपकी भावनाएं क्या है, यह सही नहीं है। आमीन। यह अच्छा दिखाई देता है। आमीन। तो ठीक है,
walk in the line, such a beautiful line, come where the dewdrops of mercy shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world, all ye saints of light proclaim, Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. We'll walk in the light, such a beautiful light. I'm where the dewdrops shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
अब मैं चाहता हूं कि हर कोई सीधे आसपास मुड़कर और हाथ मिलाए चारों ओर, अब हर एक के साथ, जैसा कि हम इसे फिर से गाते हैं। क्या आप मेथोडिस्ट से प्रेम करते हैं? कहें आमीन। बैप्टिस्ट से, प्रेस्बिटेरियन से, कैथोलिक से, वो ओह, क्या आप उन सब से प्रेम करते हो? कहें आमीन। हाथ मिलाते हुए जब हम जाते हैं, इससे पहले कि हम हमारे समाप्ति के गीत को गाएं, अब यह संभव होता है कि मैं रविवार को फिर से यहाँ आऊं। अब उसके बाद मैं क्रिसमस के बाद तक वापस नहीं आऊंगा। देखो, क्योंकि मैं मिशिगन जा रहा हूँ, मिशिगन से कोलोराडो जाऊंगा, कोलोराडो से इडाहो, इडाहो से कैलिफोर्निया की ओर जाऊंगा, और हम वापस आ जाएंगे। और ये संभव होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं वाटरलू आयोवा में रहूंगा 24 जनवरी से आरंभ करते हुए 2 फरवरी तक। देखो, वो वहाँ बड़ा अखाड़ा है। मुझे अभी कुछ समय पहले फोन आया था और मुझे अभी से रविवार तक प्रार्थना करने के लिए जाना है। देखो, वाटरलू आयोवा में, जो अब नजदीक है, लेकिन अब याद रखिए, शनिवार सुबह 9 बजे भाई का प्रसारण सुनना। हम उसे फोन करेंगे और उसे बताएंगे, और यह WLRP पर प्रसारित होगा, नेविल 8:45 बजे शनिवार सुबह। हम यदि मैं उन्हें नहीं ले पाया तो भाई नेविल प्रश्नों को समाप्त करेंगे। क्या भाई नेविल आप रविवार की सुबह को लेंगे? ठीक है। देखो, यदि आप परेशानी में पड़ते हैं तो मैं आपके साथ जारी रखूंगा, वो देखेगा। तो ठीक है, तो ठीक है। अब यदि आप एक बैप्टिस्ट को जानना चाहते हैं जो चिल्लाने में विश्वास करता है, तो मैं उसी तरह के चिल्लाने में विश्वास करता हूँ। वो बूढ़ी माँ बस वहाँ बैठी हुई थी और आत्मा उस पर उतरा। वो चिल्लाने लगी, वो इसे रोक नहीं पाई, वो पीछे की ओर गई और अपनी बेटी को गले लगाया। इसी तरह से मैं इसे देखना पसंद करता हूँ। आमीन। यह वास्तव में अच्छा पुराने चलन का हृदय से महसूस की गई भावनाएं हैं। ओह प्रभु, एक पुराना अनुभवी परिपक्व संत महिमा के लिए घर जाने के लिए तैयार, बस बुलावे के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। आप देखो, बस एक अच्छे समय को बिता रहा है। तो ठीक है भाई नेविल, अब जो कुछ भी वो करना चाहते हैं।